आगे सबक देखिए भाई, वबी अल्फिन वलहू आइनु वदैनुन हुआ आइनुन इन खरज मिन सुलुसिल आइनि व इल्ला फसुलुसुल आइनि व सुलुसु मा युखदु मिन अद्दैन وبثلث لزيد وعمر وعمر ميت كله لزيد وبألف وله عين ودين. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کا مال جو ہے کچھ نقد کی صورت میں ہے اور کچھ دین کی صورت میں ہے. مثلا اس کے پاس کچھ درہم و دینار نقد موجود ہیں اور کچھ اس کا جو مال ہے وہ دین کی صورت میں ہے, یعنی لوگ اس سے قرضے وغیرہ لے کر گئے ہیں, اب اس نے وہ واپس وصول کرنے ہیں. تو کچھ مال نقد ہوا اور کچھ مال دین ہوا. اب اس شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد زید کو میرے مال میں سے 1000 درہم دے دیے جائیں. تو اب یہ جو وصیت ہے کس طرح زید کو دیے جائیں گے, کیا عین اور دین دونوں سے دیے جائیں گے یا دین میں سے دیے جائیں گے یا عین میں سے دیے جائیں گے؟ تو یاد رکھیے اس میں جو زید کے لیے جو 1000 درہم کی وصیت کی, تو اس وصیت کو سب سے پہلے عین سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی, یعنی جو نقد موجود ہے. اگر اس آدمی کے پاس نقد مال اتنا تھا کہ جس کے ثلث میں سے 1000 درہم نکل سکتے ہیں, کیونکہ 1000 درہم کی وصیت ہے اور وصیت ثلث میں نافذ ہوتی ہے, تو اگر جو نقد مال ہے اس میں سے اگر 1000 درہم نکل سکتے ہیں تو اس کو پھر نقد میں سے ہی پورا 1000 دے دیں گے. مثلا اس کے پاس 5000 درہم نقد تھے, اب 5000 میں سے تو 1000 ثلث میں آرام سے نکل آتے ہیں, تو چنانچہ 1000 نقد میں سے جو ہے وہ وصیت نافذ کر دیں گے, وہ زید کو دے دیں گے, اور باقی کا مال جو نقد ہے وہ اور جو دین ہے وہ سارا وارثوں کا ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر اس کا نقد مال اتنا نہیں ہے کہ جس کے ثلث میں سے 1000 درہم نکل آئیں, مثلا اس کا نقد مال صرف 2000 درہم ہے, تو پھر 2000 درہم کے ثلث میں سے تو 1000 درہم نہیں نکل سکتے. تو اس صورت میں جو نقد مال ہوگا اس کا ثلث جو ہے, نقد مال کا ثلث جتنا بھی بنے وہ وصیت والے کو دے دیا جائے گا, اور جو باقی اس کا حصہ رہ گیا وہ دین میں سے لے لے گا, اور دین تو تھوڑا تھوڑا کر کے وصول ہوتا ہے, تو جب بھی دین وصول ہوا کرے اس دین کا ثلث وہ لے لیا کرے گا اور باقی 2 ثلث وارث لے لیا کریں گے. تو اس ہر دین میں سے یہ ثلث لیتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا 1000 پورا ہو جائے. تو مثلا نقد مال کتنا تھا؟ 2000. تو اس نقد کا ثلث اس کو دے دیں گے. 2000 کا ثلث کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 750 کے لگ بھگ بنتا ہے. تو یہ 750 درہم جو ہے وہ وصیت والے کو نقد دے دیں گے, اور جو 325 درہم اس کا حصہ باقی رہ گیا کیونکہ اس کو 1000 دینے ہیں, تو وہ جو 325 ہیں وہ دین میں سے لیں گے. جب بھی دین کا کچھ حصہ وصول ہوا کرے گا اس کا 1 ثلث جو ہے وہ اس وصیت والے کو دے دیا کریں گے, اس موسیٰ لہو کو دے دیا کریں گے, اور 2 ثلث جو ہیں وہ وارث لے لیا کریں گے یہاں تک کہ اس کے 1000 درہم پورے ہو جائیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. دیکھیے کہتے ہیں وہ بھی الفین, اور 1000 کی وصیت میں ولہو عین و دین, اور اس حال میں کہ وہ جو وصیت کرنے والا ہے اس کا کچھ مال تو عین ہے, یعنی نقد ہے. عین کا کیا معنی؟ نقد. کچھ مال تو اس کا نقد ہے. ودین, اور کچھ مال دین ہے. ہوا عین, تو وہ 1000 جو ہیں وہ عین ہوں گے یعنی نقد میں سے دیں گے. ان خرج من ثلث العین, اگر وہ 1000 نقد کے ثلث میں سے نکل آئیں, اگر وہ 1000 نقد کے ثلث میں سے نکل آئیں تو اس کو نقد ہی میں سے 1000 اس کو دے دیں گے. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بھی الفن, 1000 کی وصیت کرنے کی صورت میں. ہوا عین, درمیان میں حال ہے, ولہو عین و دین, ذرا اس کو ہٹا دیں. وہ بھی الفن, اور 1000 کی وصیت کی صورت میں. ہوا عین, وہ 1000 جو ہیں وہ نقد ہوں گے. ان خرج من ثلث العین, اگر وہ नकद के सुलुस में से निकल आए। व इल्ला, और अगर ऐसा न हो यानी वो नकद के सुलुस में से 1000 नहीं पूरे होते, फसुलुसुल आईनी, तो नकद का सुलुस उसको दे देंगे जितना भी बन गया, जितना भी बन गया। मसलन अगर नकद उसके पास कितने हैं, 2700 दिरहम, तो 2700 का सुलुस जो है 900 दिरहम, तो 900 दिरहम उसको नकद दे देंगे और बाकी के 100 दिरहम वो किससे ले लेगा, देन में से ले लेगा। और देन में से भी किस तरह लेगा कि देन का जो भी हिस्सा वसूल हुआ करेगा उसका सुलुस इस मूसा लहू को दे दिया करेंगे और 2 सुलुस वारिसों को दे दिया करेंगे यहां तक के इसके 1000 दिरहम पूरे हो जाए। तो कहते हैं वह इल्ला, और अगर ऐसा ना हो यानी नकद के सुलुस में से 1000 पूरे नहीं होते, फसुलुसुल आईनी, तो इसके लिए नकद का सुलुस होगा और वसुलुसु मा युखदु मिना देन, और सुलुस वो जो लिया जाएगा देन में से, यानी देन में से जब भी वसूली होगी तो इसका सुलुस उसको दे दिया करेंगे यहां तक इसका माल पूरा हो जाए। तर्जमा समझ में आ गया। وَبِسُلُسٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ وَعَمْرٌ مَيِّتٌ كُلُّهُ لِزَيْدٍ। सूरत मसला ये, एक शख्स ने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद जैद और आमर को मेरे माल का तीसरा हिस्सा दे देना, लेकिन आमर का तो पहले ही इंतकाल हो चुका है और मुर्दे के लिए तो वसीयत हो ही नहीं सकती, मुर्दा तो अहल ही नहीं है वसीयत का, लिहाजा यूं समझेंगे कि यह सारा सुलुस किसको देना है, सारा सुलुस जैद को देना है, तो वो सारा सुलुस जैद को दे देंगे। बात समझ में आ गई। ये माना है वबी सुलुसिन लिजैदिन व आमरिन, और सुलुस की वसीयत जैद और आमर दोनों के लिए, व आमरुन मैयतुन, इस हाल में कि आमर जो है वो मर चुका हो, कुल्लुहु लिजैदिन, तो ये सुलुस सारा का सारा जैद के लिए होगा, लिअन्नल मैयत ला युज़ाहिमुल हय्या, इसलिए क्योंकि मैयत वो मुकाबिल नहीं हो सकती जिंदा के, मैयत जिंदा का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या माना, यानी भाई मैयत में अहलियत ही नहीं है वसीयत की कि वो मूसा लहू बने, उसमें अहलियत ही नहीं, और जिंदा में अहलियत है, तो एक है अहलियत वाला एक है गैर अहलियत वाला, दोनों एक दूसरे के मुकाबिल नहीं हो सकते, तो यहां मैयत को कुछ भी नहीं मैयत के लिए होगा और सारा किसको मिल जाएगा, जिसमें अहलियत है यानी जैद है। ये माना लिअन्नल मैयत ला युज़ाहिमुल हय्या, इसलिए क्योंकि मैयत जो है वो मुकाबिल नहीं हो सकती जिंदा के, कमा लौ काला, जैसे कि कहा उसने लिज़ैदिन व जिदारिन, गोया उसने यूं कहा है कि मेरे माल का सुलुस जैद के लिए है और दीवार के लिए है। भाई जैद में तो अहलियत है, वो तो मालिक बन सकता है माल का, वो जिंदा है, और दीवार, दीवार में तो अहलियत ही नहीं है, वो तो मालिक बन ही नहीं सकती माल की, तो गोया दूसरे लफ्जों में वो ये सारी वसीयत किसके लिए कर रहा है, जैद के लिए, दीवार के लिए नहीं है बल्कि ये जैद के लिए है, तो सारा सुलुस किसको मिल जाएगा, जैद को मिल जाएगा। सूरत समझ में आ गई। ये माना है कमा लौ काला, जैसे कि उसने कहा लिज़ैदिन व जिदारिन, के जैद और दीवार के लिए है ये सुलूस। वअन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है, अन्नहु इल्लम युअलम बिमौतिही फलहु निस्फु सुलूसी लिअन्नल वसीयत इंदहु सहीहतुन लिअम्रिन। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो शख्स जिसने ये वसीयत की थी कि मेरे माल का सुलुस जैद और अमर को दे देना, अगर इसको इलम नहीं था कि अमर मर चुका है, तो फिर इस सूरत में जैद को निसफ देंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं अमर मर चुका है, वो तो यही समझ रहा है कि अमर जिंदा है, तो अपने हिसाब से वो जैद के लिए पूरे की वसीयत कर रहा है या आधे की वसीयत कर रहा है। भाई देखो ना, जैद और अमर दोनों के लिए वसीयत कर रहा है और उसको नहीं पता कि अमर मर चुका है, तो उस अपने हिसाब से वो दो जिंदा आदमियों के लिए वसीयत कर रहा है। तो जब उसने कहा मेरे माल का सुलुस जैद और अमर को दे देना, गोया वो क्या चाहता है, जैद को कितना मिले, आधा मिले। बात समझ में आ गई। लिहाजा अगर उसको इलम नहीं था अमर के मरने का, अमर बेशक मर चुका है, लेकिन इस सूरत में फिर पूरा का पूरा सुलुस जैद को नहीं देंगे बल्कि निसफे सुलुस किसको दे देंगे, जैद को दे देंगे। तो अन अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अन्नहु इल्लम युअलम बिमौतिही, अगर वसीयत करने वाले को इलम ना हो अमर की मौत के बारे में, फलहू निसफु सुलुसी, तो जैद के लिए निसफ सुलुस होगा, लिअन्नल वसीयत इंदहु सहीहतुन लिअमरिन, इसलिए क्योंकि वसीयत जो है वो वसीयत करने वाले के नजदीक सही थी अमर के लिए, वसीयत करना सही था उसके नजदीक और अपने लिहाज से तो उसने सही वसीयत की थी, मालूम हुआ वो आधा आधा दोनों को देना चाहता है, लेकिन अमर तो मर चुका है लिहाजा अमर को तो आधा नहीं मिलेगा लेकिन जैद को आधा उसके हिस्से का मिल जाएगा। तो कहते हैं लिअन्नल वसीयत इंदहु सहीहतुन लिअमरिन, इसलिए क्योंकि वसीयत जो है वो वसीयत करने वाले के नजदीक सही थी अमर के लिए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था ये मर चुका है, फलम युसिलिल हय्य इल्ला बिनिसफ सुलुस, तो उसने वसीयत नहीं की जिंदा यानी जैद के लिए मगर निसफ सुलुस की ही, उसने निसफ सुलुस की ही वसीयत की है जैद के लिए, बेखिलाफ इमा इदा अलिमा बिमौती ही, बखिलाफ उस सूरत के जब इसको अमर की मौत का इलम हो, लिअन्न अल वसीयत लिलमय्यित लगवन, इसलिए क्योंकि वसीयत मुर्दा के लिए वो लगव है उसका कोई एतबार नहीं, अगर इसको पता था कि अमर मर चुका है और फिर भी कहता है कि मेरे माल का सुलुस जैद और अमर को दे देना, तो अमर तो मर चुका है और मुर्दा के लिए तो वसीयत दुरुस्त ही नहीं है, तो मुर्दे का जिक्र लगव हो गया और गोया वो यूं कहना चाहता है कि यह सारा सुलुस किसको दे देना, जैद को दे देना। ये माना है बेखिलाफ इमा इदा आलिमा बी मौत ही, बखिलाफ इसके जब उसको इलम हो अमर की मौत का, लियान अल वसीयत लिल मैत लगवन, इसलिए क्योंकि वसीयत मुर्दा के लिए लगव है यानी उसका कोई एतबार नहीं, फयकून राजियन बी तमाम सुलुस लिज़ैदिन, तो वो राजी हो गया तमाम सुलुस का जैद के लिए, तो गोया वो राजी है सारा सुलुस जैद को देने पर, जब राजी है तो जैद को सारा सुलुस दे देंगे। फइन काल बैनहुमा फनिसफुहु लहू, सूरत मसला ये, वसीयत करने वाला कहता है, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यूं कहता है कि मेरे माल का सुलुस जैद और अमर के दरमियान है यानी उनमें तकसीम कर देना, जैद और अमर में तकसीम कर देना। तो इस सूरत में अमर अगर मर चुका है तो फिर जैद को निसफ ही मिलेगा सारा नहीं, भाई क्यों, अमर तो मर चुका है और मुर्दा के लिए तो वसीयत सही नहीं, तो सारा सुलुस किसको मिलना चाहिए, जैद को। कहते हैं भाई उसने अल्फाज क्या बोले, आप जरा उस पर गौर करें, उसने क्या कहा था कि ये सुलुस उन दोनों के दरमियान है, किसके, जैद और अमर, मालूम हुआ इस सुलुस को पूरा किसी को नहीं देना चाहता, दोनों को आधा आधा देना चाहता है, तो वो जैद जो जिंदा है उसको कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। फइन काल, अगर वसीयत करने वाले ने कहा, बैनहुमा के वो जो सुलुस है वो इन दोनों के बीच है यानी दोनों के दरमियान है, फनिसफुहु लहू, तो उसका निसफ जो होगा वो जैद के लिए होगा। इन काल सुलुसु माली बैन जैदिन व अमरिन, अगर किसी ने यूं कहा कि मेरे माल का तीसरा हिस्सा अमर और जैद के दरमियान है, इनके दरमियान मुश्तरक है, वह हुआ मैं ये तुन, इस हाल में कि अमर जो है वो मर चुका है, फली जैदिन निसफ सुलुसी, तो जैद के लिए निसफ सुलुस होगा, लियन्नहु सरीहुन फी अन्न लिज़ैदिन निसफ सुलुसी, इसलिए क्योंकि ये अल्फाज जो उसके हैं ये सरीह हैं, सरीह का क्या माना, साफ लफ्ज है, वाजह, साफ वाजह लफ्जों में वो क्या कह रहा है कि जैद के लिए निसफ सुलुस है। तो कहते हैं लिअन्नहु सरीहुन, इसलिए क्योंकि ये अल्फाज उसके सरीह हैं, फी अन्न लिज़ैदिन निसफ सुलुसी, इस बारे में कि जैद के लिए निसफ सुलुस है, भाई जब तकसीम करेंगे तो मुश्तरक है जब दोनों में, तो मालूम हुआ निसफ है दोनों जैद के लिए। وَبِسُلُسٍ وَهُوَ فَقِيرٌ لَهُ سُلُسُ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ, सूरत मसला ये, एक शख्स ने वसीयत की जैद के लिए कि मेरे मरने के बाद मेरा सुलुस माल जैद को दे देना, और जिस वक्त उसने वसीयत की उसके पास एक पाई नहीं थी, बिल्कुल कंगाल था भाई, एक रुपया उसके पास नहीं है, लेकिन वसीयत क्या की, सोलो से माल जैद को दे देना, लेकिन बाद में उसको अल्लाह ने माल दे दिया, अब जब वो मरने लगा तो अब उसके पास करोड़ों की जायदाद है, तो क्या अब जैद को कुछ मिलेगा। कहते हैं हां भाई, वसीयत नाफिस कब होती है, मौत के बाद नाफिस होती है, जिंदगी में नहीं। तो जब वसीयत की थी बेशक उस वक्त इसके पास एक पाई नहीं थी, लेकिन मौत के वक्त जब नाफिस हुई तो इसके पास माल है, तो इसके माल का सुलुस जैद को दे देंगे। बात समझ में आ गई। वह बिसुलुसिन, और सुलुस की वसीयत में वह हुआ फकीर, उन इस हाल में कि यह वसीयत करने वाला फकीर है, यानी इसके पास कुछ भी नहीं है। लहू सुलुसु माली ही आइंदा मौती ही, तो जैद के लिए उसका सुलुस माल होगा उस वसीयत करने वाले की मौत के वक्त में। अय काल, एक शख्स कहता है सुलुसु माली लहू, मेरा सुलुस माल जो है जैद के लिए है। वला माल लिल मोसी, इस हाल में के वसीयत करने वाले के पास कोई माल नहीं है। फक तसबा मालन, फिर उसने माल कमाया। फलिल मूसा लहू सुलुसु मालिल मोसी इंदा मौती ही, तो मूसा लहू यानी जिसके लिए वसीयत की, लहू सुलुसु मालिल मोसी, तो उसके लिए वसीयत करने वाले का सुलुस माल होगा। इंदा मौती ही, उसकी मौत के वक्त। وبثلث غنمه ولا غنم له او هلك قبل موته بطلت صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے وصیت کی دوسرے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میری بھیڑ بکریوں کا ثلث زید کو دے دینا کس کا بھیڑ بکریوں کا ثلث زید کو دے دینا اور جس وقت اس نے یہ کہا اس وقت اس کے پاس ایک بھی بھیڑ بکری نہیں تھی और फिर मौत तक इसने खरीदी भी नहीं, मालिक भी नहीं बना भेड़ बकरियों का, तो इसकी वसीयत बातिल हो गई, क्योंकि उसने आम माल में से वसीयत नहीं की। किस में से की है? भेड़ बकरियों में से, और मौत तक उसके पास कोई भेड़ बकरियां थी ही नहीं। इसके बजाय दूसरी सूरत, एक शख्स ने कहा कि मेरी भेड़ बकरियों में से सुलुस जैद को दे देना, और उसके पास सैकड़ों भेड़ बकरियां थीं उस वक्त, लेकिन बाद में कोई आफत या बीमारी ऐसी आई कि सारी हलाक हो गई, अब मौत के वक्त एक भी भेड़ बकरी उसके पास नहीं है, तो अब जैद को क्या देंगे? कहते हैं कुछ भी जैद को नहीं मिलेगा, उसने आम माल की वसीयत नहीं की थी, भेड़ बकरियों की वसीयत की थी, और भेड़ बकरी तो इस वक्त एक भी नहीं है, लिहाजा जैद को कुछ नहीं मिलेगा। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कहें, उसकी वसीयत बातिल हो गई। बात समझ में आ गई। وبثلث غنمه ولا غنم له, और ثلث غنم, غنم कहते हैं भेड़ बकरी को। وبثلث غنمه, और अपनी भेड़ बकरियों के सुलुस की वसीयत की सूरत में। वला غنم له, इस हाल में कि इसकी कोई भेड़ बकरी है ही नहीं, यानी जब वसीयत की उस वक्त से ही कुछ नहीं है। और हलक قبل موته, यह दूसरी सूरत कि भेड़ बकरियां तो थीं लेकिन इसके मरने से पहले हलाक हो गई। बतालत, तो दोनों सूरतों में उसकी वसीयत बातिल है। कौलुहू वला गनम लहू, मातिन का जो कौल है वला गनम लहू, कि उसकी कोई भेड़ बकरी ना हो, कहते हैं माना हो, इसका माना यह है कि अन्नहू ला गनम लहू इंदल वसीयती, कि उसके पास कोई भेड़ बकरी नहीं है वसीयत के वक्त में। बात समझ में आ गई। वलम यस्तफिद गनमन, और उसके बाद भी उसने कोई भेड़ बकरियां हासिल नहीं की। हत्ता इन इस्तफादा गनमन फसहीह अन्नल वसीयत तसिह, यहां तक कि अगर इसने इन इस्तफादा गनमन, अगर इसने भेड़ बकरियां हासिल कर ली, फसहीह अन्नल वसीयत तसिह, तो सही कौल यह है कि वसीयत सही हो जाएगी। अगर वसीयत के वक्त अगर कोई भेड़ बकरी इसकी मिल्कियत में नहीं, लेकिन बाद में इसने भेड़ बकरियां हासिल कर ली, तो सही कौल यह है कि उसका सुलुस फिर जैद को मिलेगा। भाई बात समझ में आ गई। वह बिशातिम माली औ गनमी वला शात लहू कीमत उहा फी माली व बतलत फी गनमी। सूरत मसला यह, एक शख्स ने दूसरे के लिए वसीयत की और कहा कि जैद को एक भेड़ बकरी दे देना, मी माली मेरे माल में से, जैद को एक भेड़ बकरी दे देना मेरे माल में से, और फिर इस आदमी का इंतकाल हो गया और इसके पास एक भी भेड़ बकरी नहीं थी जब उसने वसीयत की, उस वक्त भी नहीं थी, और जब मरा उस वक्त भी नहीं थी। जब वसीयत की उसने क्या वसीयत की? मेरे माल में से, उसके लफ्जों पर जरा गौर करना, मेरे माल में से एक भेड़ बकरी जैद को दे देना मेरे मरने के बाद, तो उसने भेड़ बकरी की निस्बत कर दी माल की तरफ। इसके पास तो कोई भेड़ बकरी नहीं है और निस्बत कर रहा है माल की तरफ, मालूम हुआ वो भेड़ बकरी की कीमत देना चाहता है, भेड़ बकरी नहीं देना चाहता बल्कि उसकी, क्योंकि भेड़ बकरी तो इसके पास है नहीं। तो वजह है वो क्या कह रहा है, मेरे माल में से एक भेड़ बकरी इसको दे देना, भाई तुम्हारे पास तो कोई भेड़ बकरी है ही नहीं, तो फिर भी वो भेड़ बकरी का जिक्र कर रहा है और अपने माल की तरफ निस्बत कर रहा है, मेरे माल में से दे देना। मालूम हुआ वो भेड़ बकरी का इरादा ही नहीं है, उसका इरादा किसका है, कीमत का है, कि एक भेड़ बकरी की कीमत उसको दे देना, लिहाजा उसको एक भेड़ बकरी की कीमत दे देंगे। इसके बजाय अगर वो यूं कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी भेड़ बकरियों में से एक भेड़ बकरी जैद को दे देना, अब मालूम हुआ वो माल नहीं देना चाहता, भेड़ बकरी ही देना चाहता है, और हाल यह है इसके पास एक भी भेड़ बकरी नहीं है और ना मौत तक इसने हासिल की, तो इसकी ये वसीयत बातिल हो जाएगी, क्योंकि इसने क्या कहा है, मेरी भेड़ बकरियों में से एक बकरी देना, तो मालूम हुआ वो भेड़ बकरी ही देना चाहता है, माल नहीं देना चाहता है, क्योंकि क्या कह रहा है, मेरी भेड़ बकरियों में से एक भेड़ बकरी देना, मालूम वो भेड़ बकरी ही देना चाहता है, इसीलिए भेड़ बकरियों की तरफ निस्बत कर रहा है कि उनमें से एक इसको दे देना, माल की तरफ निस्बत नहीं कर रहा। तो इस सूरत में इस वसीयत बातिल हो जाएगी, क्योंकि भेड़ बकरियां हैं ही नहीं इसके पास, तो मूसा लहू को कुछ भी नहीं मिलेगा। मसला समझ में आ गया। कहते हैं वबिशातिम मिम माली औ गनमी, और अगर वसीयत की एक भेड़ बकरी की, मिम माली मेरे माल में से, औ गनमी या मेरी भेड़ बकरियों में से, वला शाता लहू इस हाल में कि उसकी कोई भेड़ बकरी नहीं थी, वसीयत की इस हाल में कि उसके पास कोई भेड़ बकरी नहीं थी और फिर मौत तक आई भी कोई नहीं, तो कीमत हा उस भेड़ बकरी की कीमत होगी, फी माली उस वक्त जब उसने फी माली कहा था, माल की तरफ निस्बत की थी भेड़ बकरी की, वह बतलत फी गनमी और बातिल हो जाएगी उसकी वसीयत फी गनमी की सूरत में, यानी जब उसने भेड़ बकरी की निस्बत किसकी तरफ की थी, अपने भेड़ बकरियों की तरफ की थी। फइन नहू इदा काल लहू शाह तुम मिम माली, इसलिए क्योंकि जब उसने कहा कि एक भेड़ बकरी मेरे माल में से, वला शाता लहू इस हाल में कि इसके पास कोई भेड़ बकरी नहीं है, इसके पास एक भी भेड़ बकरी नहीं है और फिर भी वो उससे क्या कह रहा है, शाह तुम मिम माली मेरे माल में से एक भेड़ बकरी, तो उलिमा तो मालूम हुआ कि अन्नल मुरादा मालियत शाती, कि उसका इरादा जो है भेड़ बकरी की मालियत यानी कीमत है। वह इदा काला और जब उसने ये कहा, लहू शातुम मिन गनमी वला गनम लहू, कि उसके लिए एक भेड़ बकरी है मेरी भेड़ बकरियों में से, वला गनम लहू इस हाल में कि इसके पास तो कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं, तो युरादु ऐन शाती, तो मुराद जो है वो ऐन शात होगी, यानी ऐन भेड़ बकरी मुराद होगी, उसकी कीमत मुराद नहीं होगी। वल्लैसत मौजूदतन, और हाल यह है कि भेड़ बकरी तो मौजूद ही नहीं है, तो फतबतुलुल वसीयत, तो वसीयत बातिल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब यहां से फर्क बयान कर रहे हैं। ऊपर मतन में क्या आया था, मतन पे जरा नजर रखो, क्या कहा था, वह बिशातिम मिम माली औ गनमी वला शातलहू, शातलहू इस हाल में कि उसके पास एक भी भेड़ बकरी नहीं है। मैंने आपको बतलाया था एक लफ्ज है गनम, गनम का माना भी भेड़ बकरी और शात का माना भी भेड़ बकरी। तलबा में आम क्या राइज है, वो शात का तर्जमा हमेशा बकरी के साथ करते हैं, ये दुरुस्त नहीं भाई। शात का लफ्ज भेड़ बकरी दोनों पर बोला जाता है, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, चाहे भेड़ की जिन्स से हो चाहे बकरी की जिन्स से हो, तो उसको शात कहते हैं। अब फर्क बयान करने लगे हैं कि मतन में क्या आया, वला शात लहू इस हाल में कि उसके पास भेड़ बकरी नहीं है, और हिदाया में इसी मकाम पर साहिब हिदाया फरमाते हैं वला गनम लहू, वला मातिन ने क्या कहा, वला शात लहू, और साहिब हिदाया ने क्या फरमाया, वला गनम लहू। अब फर्क बतलाएंगे कि शात और गनम में फर्क है, शात और गनम में फर्क है। फर्क यह कि गनम जो है वो ज्यादा भेड़ बकरियों को कहते हैं और शात भी भेड़ बकरी को कहते हैं, लेकिन एक फर्द को कहते हैं। एक भेड़ बकरी हो तो उसको कहेंगे शातुन, और ज्यादा हो यानी कम से कम तीन हो या तीन से ज्यादा तो कहेंगे गनमुन, बोला दोनों पर जाएगा, भेड़ बकरियों पर ही, चाहे भेड़ हो चाहे बकरियां हो चाहे दोनों जिनसियों मिक्स हो जैसे भी हो, लेकिन शात कहेंगे एक फर्द को और गनम कहेंगे जमात को पूरी, भेड़ बकरियों की पूरी जमात कम अज कम तीन अफराद। तो अब जब कहा वला शात लहू, और इस हाल में कि उसके पास शात भी ना हो, शात का क्या माना, एक भेड़ बकरी, वला शात लहू इस हाल में कि उसके पास एक भी भेड़ बकरी ना हो, तो मतन का तर्जमा यह हुआ उसने वसीयत किसके की कि मेरी भेड़ बकरियों में से या मेरे माल में से एक भेड़ बकरी उसको दे देना इस हाल में कि उसका एक भी भेड़ बकरी, वला शात लहू इस हाल में उसके पास एक भी भेड़ बकरी नहीं है। और साहिब हिदाया ने यहां फरमाया वला गनम लहू इस हाल में कि उसके पास भेड़ बकरियां नहीं हैं, भेड़ बकरियां नहीं हैं। तो साहिब हिदाया की इबारत में दो सूरतें आ गईं, साहिब हिदाया की वला गनम लहू इस हाल में कि उसके पास भेड़ बकरियां ना हो, एक भी ना हो फिर भी कह सकते हैं ला गनम लहू, एक भी भेड़ बकरी किसी के पास नहीं है, क्या कह सकते हैं ला गनम लहू उसके पास कोई भेड़ बकरी नहीं। अगर एक भेड़ बकरी हो तब भी कह सकते हैं ला गनम लहू उसके पास भेड़ बकरियां नहीं हैं, क्योंकि एक है ना, जमा तो नहीं है। और हम भी क्या कह रहे हैं, हमने तो एक की नफी नहीं की, हमने क्या कहा भेड़ बकरियां नहीं हैं। तो ला शात लहू इसमें एक सूरत दाखिल हुई जब एक भी ना हो, एक अगर एक भी भेड़ बकरी हुई तो यह कलाम गलत हो जाएगा। और साहिब हिदाया ने क्या कहा वला गनम लहू इसमें दो सूरतें दाखिल हो गई, वो सूरत भी आ गई जब कोई भेड़ बकरी ना हो तब भी आप कह सकते हैं ला गनम लहू उसके पास कोई भेड़ बकरी नहीं है, और एक अगर किसी के पास भेड़ बकरी हो तो भी आप कह सकते हैं ला गनम लहू उसके पास भेड़ बकरियां नहीं हैं, यानी जमा नहीं है, एक है जमा। तो लिहाजा साहिब हिदाया की इबारत वो कहेंगे, वो आगे बतलाएंगे वो आम है, उसमें दो सूरतें आ गईं, वो अशमल है, वो दो सूरतों को शामिल है, और मातिन की इबारत अहवत है, उसमें एहतियात ज्यादा है कि एक ही सूरत जिक्र करनी चाहिए, दूसरी सूरत को दाखिल नहीं करना चाहिए। फर्क समझ में आया? देखिए भाई वालम जान ले तू अन्नहु काल फिल हिदायती के साहिब हिदाया ने हिदाया में फरमाया है वला गनम लहू व काल फिल मतनी और मतन के अंदर मातिन फरमाते हैं वला शात लहू व बैनहुमा फर्कुन और इन दोनों के दरमियान फर्क है लिअन्न शात फर्दुम मिनल गनमी इसलिए क्योंकि एक भेड़ बकरी जो है वो फर्द है किसमें से मिनल गनमी कई भेड़ बकरियों में से यानी उनकी जमात में से फैदा लम तकुन लहू शातुन जब उस आदमी के पास कोई भेड़ बकरी नहीं तो ला यकून लहू गनमुन तो उसके लिए गनम भी नहीं होगी जब एक नहीं है तो जमात भी नहीं होगी लाकिन इदा लम यकुन लहू गनमुन लेकिन जब उसके लिए भेड़ बकरियां नहीं जब उसने कहा वला शात लहू इस हाल में कि उसके लिए भेड़ बकरी नहीं है तो शात भी नहीं मालूम हुआ और गनम भी
नहीं।
शात की भी नफी हो गई, शात की तो साफ लफ्जों में हो गई वला शात लहू और गनम की भी नफी हो गई जब एक नहीं है तो मालूम हुआ जमात तो बतरीके औला नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये माना फैदा लम तकुन लहू शातुन ला यकून लहू गनमुन जब उसके लिए एक भेड़ बकरी नहीं है तो उसके लिए भेड़ बकरियों की जमात भी नहीं है लाकिन इदा लम यकुन लहू गनमुन ला यलजमु अन ला तकुन लहू शातुन लेकिन अगर इसके पास गनम ना हो लाकिन इदा लम यकुन अगर इधर देखो अगर उसके पास गनम ना हो यानी कई भेड़ बकरियां ना हो तो इससे यह लाजिम नहीं आता उसके पास एक भी ना हो, हो सकता है एक हो और जमात ना हो। बात समझ में आ गई? यह माना है लाकिन इदा लम यकुल लहू गनम लेकिन जब उसके पास भेड़ बकरियां नहीं हैं तो ला यलजमु अल्ला तकून लहू शातुन तो यह लाजिम नहीं आता कि उसके पास एक भेड़ बकरी भी नहीं है लेहतमाल यकून लहू वाहिदुन ला कसीरुन इसलिए क्योंकि यह भी एहतमाल है हो सकता है उसके पास एक हो ज्यादा ना हो। فعبارت الہدایت تناولت صورتین, تو ہدایہ کی عبارت وہ شامل ہوئی دو صورتوں کو. ہدایہ میں کیا کہا تھا؟ لا غنم له, اس کے لیے بھیڑ بکریاں نہیں. کوئی بھی نہ ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں لا غنم له, اور ایک ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں لا غنم له, کیونکہ زیادہ تو نہیں ہے. فعبارت الہدایت تناولت صورتین, تو ہدایہ کی عبارت جو ہے وہ شامل ہے دو صورتوں کو. ما اذا لم تکن لہو شات اصلا, اس صورت کو بھی جب اس کے پاس شات ہو ہی نہ سرے سے. وما تکون لہو شات لیکن لا غنم لہو, اور اس صورت کو بھی شامل ہے کہ اس کے پاس شات تو ہو لیکن غنم نہ ہو. ففی صورتین تبطل الوصیت, تو دونوں صورتوں کے اندر وصیت باطل ہو جائے گی. کس کے نزدیک؟ صاحب ہدایہ کے نزدیک. صاحب ہدایہ کے نزدیک صاحب ہدایہ نے کیا کہا؟ ولا غنم لہو, اس حال میں کہ اس کے پاس غنم نہ ہو. اور اس میں کتنی صورتیں آئیں؟ دو. کون سی؟ ایک بھی نہ ہو اور دوسری صورت کے ایک ہو. تو دونوں صورتوں میں وصیت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل. یہ کس کے نزدیک؟ صاحب ہدایہ کے نزدیک. تو ففی صورتین تبطل الوصیت, تو دونوں صورتوں میں وصیت باطل ہو جاتی ہے یعنی صاحب ہدایہ کے نزدیک. وعبارت المتن لم تتناول الا الصورت الاولى, اور متن کی جو عبارت ہے وہ شامل نہیں ہے مگر صرف پہلی صورت کو. کون سی صورت؟ متن میں کیا آیا؟ ولا شاط لہ, جب ایک بھی نہ ہو, ایک بھی نہ ہو تو اس صرف اس کو شامل ہے. ولم یعلم منہ الحکم فی الصورت الثانیہ, اور اس سے معلوم نہیں ہوتا دوسری صورت کا حکم. دوسری صورت کون سی تھی؟ جب ایک ہو. تو متن میں صرف وہ صورت ہے جب ایک بھی نہ ہو تو وصیت باطل. اگر ایک ہو پھر وصیت باطل ہوگی یا نہیں؟ متن میں اس کو چھیڑا ہی نہیں گیا, اس کو ذکر ہی نہیں کیا گیا. متن میں کیا کہا؟ ایک آدمی نے کیا وصیت کی؟ کہ میری بھیڑ بکریوں میں سے یا میرے مال میں سے ایک بھیڑ بکری کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے. اس حال میں لا شاط لہو, اس آدمی کے پاس کوئی بھیڑ بکری نہیں. جب کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس وقت اس کی وصیت باطل ہوگی. اگر ایک ہو پھر تو وصیت باطل نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو متن میں ذکر ہی نہیں ہے. متن میں تو وہ صورت ذکر ہے جب ایک بھی نہ ہو تو وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل. تو جب ایک بھی نہ, ادھر دیکھو, جب ایک بھی نہ ہو تب کیا ہوگی؟ وصیت باطل. اور اگر ایک ہو پھر وصیت باطل ہوگی, اس کو تو متن میں ذکر ہی نہیں کیا گیا, تو اس کے باطل ہونے کا پتہ نہ چلا اس سے, اس دوسری صورت کے باطل ہونے کا پتہ نہ چلا. تو کہتے ہیں صاحب ہدایہ کی عبارت اشمل ہے, اس میں دو صورتیں داخل ہو گئیں, لیکن متن کی عبارت میں احتیاط زیادہ ہے کہ جب ایک بھی نہ ہو تب وصیت باطل ہونی چاہیے, دوسری صورت میں وصیت باطل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک موجود ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولم یعلم منہ الحکم فی الصورت الثانیہ, تو اس سے معلوم نہیں ہوتا دوسری صورت کا حکم یعنی جب اس کے پاس ایک موجود ہو. فعبارت الہدایت اشمل, تو ہدایہ کی جو عبارت ہے وہ اشمل ہے یعنی وہ زیادہ شامل ہے, اس میں دو صورتیں شامل ہو رہی ہیں. لیکن ہادی احوت, لیکن یہ جو متن کی عبارت ہے یہ احوت ہے یعنی اس میں زیادہ احتیاط ہے, یہ اس میں تفضیل ہے احوت احتیاط سے بھائی, لیکن اس میں زیادہ احتیاط ہے کہ ایک صورت جب ایک بھی بھیڑ بکری نہ ہو تب وصیت باطل ہونی چاہیے, دوسری صورت میں تو باطل نہیں ہونی چاہیے. اور ماتن نے بھی دوسری کو چھیڑا ہی نہیں, ذکر ہی نہیں کیا, صرف ایک صورت کو ذکر کیا. آگے دیکھیے بھائی, وَبِسُلُسِ مَالِهِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ سَلَاسٌ. جی ایک اور فائدہ میں ذکر کرتا ہوں, مجھے یاد کروانا یہ اگلے مسئلے کے بعد. بھائی اگلے مسئلے کے بعد, وَبِسُلُسِ مَالِهِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ سَلَاسٌ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَهُنَّ سَلَاسَةُ أَخْمَاسٍ وَالْمَسَاكِينِ لَهُنَّ سَلَاسَةُ أَخْمَاسٍ. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے وصیت کی کہ یہ جو میرا مال ہے اس کا سلس میری جو ام ولد ہیں ان کو دینا, اور وہ تین ہیں, کتنی ہے امے ولد اس کی؟ تین. یعنی تین باندیاں ہیں جس سے اس کی اولاد ہوئی ہے اور تینوں کا اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ میری اولاد ہیں. تو یہ تینوں کیا بن گئیں؟ اس کی امے ولد. تو ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مال کا ثلث جو ہے وہ میری ان امہات اولاد کو دے دینا اور فقراء کو دے دینا اور مساکین کو دے دینا. اب کس کس کو کتنی وصیت کا کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس ثلث کے پانچ حصے کر دیں گے, کیونکہ اس نے کیا کیا ذکر کیا؟ امہات اولاد کو ذکر کیا, فقراء کو ذکر کیا اور مساکین کو ذکر کیا. تو لہذا تین امہات اولاد, ایک ایک حصہ تینوں کا, ایک حصہ فقراء کا اور ایک حصہ مساکین کا, تو پانچ حصے. گویا وہ جو ایک ثلث نکالیں گے جس میں وصیت نافذ کرنی ہے, اس ایک ثلث کے پانچ حصے کر دیں گے اور ہر حصہ خمس کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ خمس. تو تین خمس جو ہیں وہ امہات اولاد کو دے دیں گے, ان باندیوں کو دے دیں گے, اور دو خمس جو ہیں فقراء اور مساکین کے ہوں گے. یعنی ایک ایک خمس, ایک خمس فقراء کا اور ایک خمس مساکین کا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَبِثُلُثِ مَالِهِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ ثَلَاثٌ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. اور ثلث مال کی وصیت جو ہے لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ, اپنی امہات اولاد کے لیے, وَهُنَّ ثَلَاثٌ, اس حال میں کہ وہ تین ہیں. یہ وہ کہنے والا نہیں کہہ رہا, یہ ویسے حال بیان کر رہے ہیں کہ کس حال میں اس نے یہ کہا. اس کی کتنی تھی امہات اولاد؟ تین تھیں. دو تھیں تو دو کا حصہ نکل آئے گا, ایک ہے تو ایک کا حصہ نکل آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئے. تو وَهُنَّ ثَلَاثٌ, اس حال میں کہ وہ تین ہیں, وَلِلْفُقَرَاءِ, اور فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے. وہ شخص یوں کہتا ہے کہ ثُلُثُ, ادھر دیکھیے, ثُلُثُ مَالِي لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِي وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. ثُلُثُ مَالِي, میرے مال کا ثُلُث جو ہے, لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِي, وہ میری امہات اولاد کے لیے ہے, وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ, اور فقراء اور مساکین کے لیے ہے. تو یہ وَهُنَّ ثَلَاثٌ, یہ کون تشریح کر رہے ہیں؟ ماتین درمیان میں تشریح کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وَبِثُلُثِ مَالِهِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ ثَلَاثٌ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. اور ثلث مال کی وصیت اپنی امہات اولاد کے لیے اس حال میں کہ وہ تین ہیں, وَلِلْفُقَرَاءِ, اور فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے, لَهُنَّ, وہ جو امہات اولاد ہیں ان کے لیے, ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ, تین خمس ہیں. اس ثلث کے کتنے حصے کریں گے؟ پانچ. اور ہر حصہ کیا کہلائے گا؟ خمس. تو تین خمس ان امہات اولاد کو ملیں گے اور ایک ایک خمس فقراء اور مساکین کو. یہ معنی ہے لَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ, ان باندیوں کے لیے جو ہیں تین خمس ہیں. هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ, یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ, ادھر دیکھیے, امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ثلث نکلے گا وصیت والا, اس ثلث کے سات حصے کرنے ہیں. سات حصے. بھائی کیوں سات حصے کیوں؟ کہتے ہیں تین حصے تو امہات اولاد کے ہو گئے, اور دو حصے ہوں گے فقراء کے, اور دو حصے ہوں گے مساکین کے. دو اور دو ہو گئے چار, چار اور تین سات, تو سات حصے نکالیں گے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ. توجہ ہے, تین حصے کس کے؟ امہات اولاد کے. دو حصے کس کے؟ فقراء کے. اور دو حصے کس کے؟ مساکین کے. تو دو اور دو ہو گئے چار, اور امہات اولاد کے تین, یہ کتنے بن گئے؟ سات. تو سات حصے کریں گے اس ایک ثلث کے, جو کس کو دینا ہے؟ وصیت والوں کو. اس کے سات حصے کریں گے, تین حصے امہات اولاد کو اور دو دو حصے فقراء اور مساکین کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ, امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے لفظ فقراء بولا, जमा का सीगा बोला, और जमा का इतलाक कम अज कम तीन पर होता है। इसी तरह मसाकीन का लफ्ज भी जमा बोला और जमा का इतलाक कम अज कम तीन पर होता है। लेकिन बात चल रही है वसीयत की, और वसीयत जो है ये मीरास के मुशाबे है। जैसे मीरास मरने के बाद मिलती है, इस तरह वसीयत भी कब नाफिज होती है? मरने के बाद। और मीरास के अंदर दो पर भी जमा का इतलाक हुआ है, यानी मीरास के अंदर दो को भी जमा शुमार करते हैं। मीरास में दो को, यानी यूं कहो, वैसे तो जमा के कम से कम अफराद तीन होते हैं, लेकिन मीरास के मसले में जमा के कम से कम अफराद दो हैं। जैसे देखो भाई, अगर किसी शख्स की सिर्फ एक बेटी हो, बेटा कोई नहीं, तो उस बेटी को निसफ मिलता है, और अगर दो बेटियां हैं तो उसको सुलुसान मिलता है, दो सुलुस मिलता है दो बेटियों को। तीन हो तब भी दो सुलुस, चार हो तब भी दो सुलुस, दस हो तब भी दो सुलुस ही इनको मिलेगा, और उसी को आपस में तकसीम करेंगी। तो दो को कितना मिल रहा है? सुलुसान। तीन को भी कितना? सुलुसान। चार को भी कितना? सुलुसान। तो देखा, जो जमा को सुलुसान मिलना था, कम से कम अफराद उसके कितने हैं? दो। मालूम हुआ दो को भी जमा शुमार करते हैं इल्मे मीरास में। दो के लिए भी जमा वाला हिस्सा होता है, जो तीन वाला हिस्सा है वही दो वाला भी हिस्सा है। तो मालूम हुआ मीरास में जमा के अकल्ले अफराद कितने हैं? दो। तो वसीयत में भी जमा के अकल्ले अफराद कितने होंगे? दो। तो यहां वसीयत के अंदर वो फुकरा जमा का सीगा बोल रहा है, और जमा के अफराद कम अज कम कितने होंगे? यहां दो। और मसाकीन भी जमा का सीगा बोला, उसके भी कम अज कम अफराद कितने होंगे? दो। तो दो और दो कितने हो गए? चार। और तीन हिस्से उम्महात औलाद के, तो सात हिस्से करके तकसीम करेंगे। बात समझ में आ गई? तो तीन हिस्से उम्महात औलाद को दे देंगे, दो हिस्से फुकरा में तकसीम करेंगे और दो हिस्से मसाकीन में तकसीम करेंगे। ये इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं। तो कहते हैं वइंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्लाह युकस्समु सुलुसु अला सबअति असुमिन, के उस सुलुस को तकसीम किया जाएगा सात हिस्सों पर। फलि उम्महातिल औलादि सलासतुम मिनहा, तो उम्महात औलाद के लिए उन सात में से तीन हिस्से होंगे। लिअन्नल मज़कूर फिल फुकराए वल मसाकीन लफ्ज़ुल जमई, इसलिए क्योंकि वो जो जिक्र किए गए हैं फुकरा और मसाकीन में, वो जमा के लफ्ज़ हैं। व अकल्लुहु फिल मीरास इस्नानी, और कम से कम जमा के अफराद जो हैं मीरास के अंदर इस्नानी, वो दो हैं। वल वसीयत उख्तुल मीरासी, और वसीयत जो है वो बहन है मीरास की, यानी उसके मुशाबे है। मीरास भी मौत के बाद और वसीयत भी मौत के बाद मिलते हैं भाई। लहुमा, अब शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील आई। उन्होंने क्या फरमाया था कि उस सुलुस के पांच हिस्से करने हैं, तो उन पर इश्काल होता है कि ये तो जमा के सीगे हैं, और वाकई जमा के अकल अफराद मीरास में कितने हैं? दो। तो वो फरमाते हैं कि जमा पर जब अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो उसकी जमईयत बातिल हो जाती है, और वो जिन्स के माना में हो जाता है। किसके माना में? जिन्स। तो अल फुकरा का माना हुआ जिन से फकीर, और अल मसाकीन का माना हुआ जिन से मिस्कीन। तो जिन्स मुराद हुई, और जिन्स का इतलाक याद रखो कलील और कसीर सब पर होता है। तवज्जो है, जिन्स का इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है। मसलन देखो, इंसान, इंसान इसमें जिन्स है। इंसान क्या है? इसमें जिन्स है। एक आदमी खड़ा हो, आप कहते हैं ये इंसान है। दो खड़े हो, आप कहते हैं ये इंसान है। दस खड़े हो, आप कहते हैं ये इंसान है। सौ खड़े हो, आप कहते हैं ये इंसान है। तो देखा, उसी लफ्ज इंसान का इतलाक एक पर भी हो रहा है और सौ और लाख पर भी हो रहा है। तो याद रखो, जिन्स का इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है। एक पर भी होता है, दो पर भी, तीन पर भी, चार पर भी, सब पर इतलाक होता है। तो यहां पर भी अल फुकरा जमा है, और जमा पर क्या आ गया? अलिफ लाम। तो इससे क्या मुराद लेंगे? जिनसे फकीर। और जिनसे फकीर, वो तो एक फकीर को भी, वो भी क्या है? जिनसे फकीर है। इसी तरह मसाकीन पर भी अलिफ लाम आ गया, तो मुराद जिनसे मिस्कीन है। और एक मिस्कीन भी क्या है? जिनसे मिस्कीन है। तो एक एक फर्द मुराद ले लेंगे। बात समझ में आ गई।
सही
तो एक एक फर्द दोनों का हुआ और तीन उम्महात औलाद हुई तो पांच अफराद हो गए। तो उनमें पांच हिस्से कर दो उस सुलुस के जो वसीयत वाला सुलुस है। बात समझ में आ गई। लहुमा शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील ये है कि अन अल जमा अल मुहल्ला बिल्लामी के वो जमा जो मुजयन की गई हो अलिफ लाम के साथ हिलियन जेवर को कहते हैं, हिलियतुन जेवर को कहते हैं। और मुहल्ला का माना है किसी को मुजयन करना, जो जिसको मुजयन किया गया हो उसको क्या कहते हैं, मुहल्ला। तो मुहल्ला बिल्लाम का क्या माना, वो लफ्ज जिस पर अलिफ्लाम को दाखिल किया गया हो उसको क्या कहते हैं, मुहल्ला बिल्लाम। शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील ये है, लहुमा शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील ये है कि अन अल जमा अल मुहल्ला बिल्लामी के वो जमा जो मुहल्ला बिल्लाम हो यानी जिसको लाम के साथ मुजयन किया गया हो, या यूं कहो आसान लफ्जों में जिस पर अलिफ्लाम दाखिल किया गया हो, युरादु बिहिल जिन्सु उससे जिन्स मुराद होती है, व तबतुल जमयतु और वहां पर जमा होना बातिल हो जाता है, जमा मुराद नहीं होते बल्कि जिन्स। जब जिन्स हो गए तो इसका इतलाक कलील पर भी होगा और कसीर पर भी होगा। का कौल ही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला का कौल है, ला यहिल्लु लकन निसाउ, अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म आ गया, ला यहिल्लु लकन निसा, आपके लिए औरतें हलाल नहीं हैं। अन्निसा का लफ्ज आया और अन्निसा कम से कम तीन औरतें हों तो उनको निसा कहेंगे। बात समझ में आ रही है, लेकिन चूंकि इस पर अलिफ्लाम दाखिल है, अब यह माना नहीं कि ए पैगंबर आपके लिए तीन औरतें हलाल नहीं है, तीन से कम कर सकते हैं, नहीं नहीं, यहां अलिफ्लाम जब आ गया तो जिन से निसा मुराद है, मालूम हुआ एक औरत भी अब आपके लिए मजीद हलाल नहीं। बात समझ में आ गई। तो ये अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाबंदी आ गई, आप मजीद निकाह नहीं कर सकते, अगरचे बाद में फिर इस पाबंदी को उठा लिया गया, बाद में इस पाबंदी को उठा लिया गया, लेकिन हुजूर ने और निकाह नहीं फरमाए। भाई समझ में आया, वो उम्महातुल मोमिनीन को इख्तियार दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे साथ रहना चाहती हो इसी मुश्किल और तंगी के अंदर, और अगर चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी कि हम आपके साथ हर हाल में राजी हैं हम आपसे। तो चुनांचे अल्लाह ने भी खुश होकर उनके लिए हुक्म नाजिल फरमाया कि ऐ पैगंबर, अब इन औरतों के बाद और औरतों से आपको निकाह की इजाजत नहीं है, यानी ऐसी आला अरफा औरतें हमने आपको नसीब फरमाई हैं, अब आपके लिए और औरतों से निकाह जायज नहीं है। लेकिन फिर मुफस्सिरीन हजरात फरमाते हैं कि बाद में ये पाबंदी खत्म कर दी गई, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मजीद निकाह नहीं फरमाए। भाई तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ला यहिल्लु लकन निसाउ, आपके लिए औरतें हलाल नहीं, फयुरादु बिहिल वाहिदु, तो इससे मुराद क्या है, वाहिद है, यानी आपके लिए कोई औरत हलाल नहीं है, फयुकस्समु अला खमसतिन, बस उस सुलुस को तकसीम किया जाएगा पांच हिस्सों पर, पांच अफराद पर, वलहुन्न सलासतुम मिन्हा, और उन उम्महात औलाद के लिए उसमें से तीन हिस्से होंगे, तीन खुमुस होंगे। बात समझ में आ गई। मैंने बतलाया था, एक फायदा आपको बतलाऊंगा। भाई यहां तक आपको पता चल गया कि ला शाता लहू का क्या माना, एक भी भेड़ बकरी ना हो तो फिर कहेंगे ला शाता लहू। और नीज ये भी आपको पता चल गया कि जिन्स जो है उसका इतलाक कलील और कसीर दोनों पर होता है। चुनांचे एक नहवी फायदा आपको जिक्र कर दूं, नहवी फायदा जिक्र कर दूं, बास तलबा ने सवाल किया, ये उन्होंने कहा कि ला रजुला फिदार और ला रजुलुन फिदार दोनों में क्या फर्क है। ला रजुला फिदार मालूम हो ये लाए नफी जिन्स है, लाए नफी जिन्स, ला रजुला फिदार, और ला रजुलुन फिदार मालूम हो ये ला मुशाबे भी लैसा है। पढ़ा है ना आपने, एक ला नफी जिन्स होता है और एक ला मुशाबे भी लैसा होता है। तो ला रजुला फिदार इसमें और ला रजुलुन फिदार दोनों में क्या फर्क है, तो याद रखिए इसमें फर्क। भाई ला रजुला फिदार ये ला नफी जिन्स है, ये जिंस की नफी करता है। क्या माना? ला रजुला फी दार, घर में जिंस रजुल नहीं है। घर में
जिंस
अगर एक भी हो तो आपका कलाम गलत है, क्योंकि जिंस तो मौजूद है। मालूम हुआ ला रजुला फी दार का माना है घर में एक भी फर्द नहीं है, और ला रजुलन फी दार का माना यह है घर में एक आदमी नहीं है, अगर दो या तीन हो तो आपका कलाम सही है। फर्क समझ में आया? ला रजुला फी दार में नफी है किससे? जिंस से। और जिंस से तभी नफी होगी जब जिंस का एक भी फर्द वहां मौजूद ना हो। और ला रजुलुन फिदार, रजुल तो एक आदमी को कहते हैं, जब कहा ला रजुलुन फिदार, घर में एक आदमी नहीं है, तो इसे दो और तीन की नफी नहीं हुई। हो सकता है एक भी ना हो तब भी कलाम सही, हो सकता है दो या तीन हो फिर भी आपका कहना सही है, ला रजुलुन फिदार, घर में एक आदमी नहीं है। भाई फर्क समझ में आ गया? आगे देखिए भाई, व बिसुलुसिन लहू वलिल फुकाराई, निस्फुन लहू व निस्फुल लहुम। सूरत मसला ये, इधर देखिए भाई, एक शख्स ने वसीयत की मेरा सुलुस माल जैद और फुकारा को दे देना। अब आप क्या फतवा देंगे, कैसे तकसीम करेंगे माल? सुलुस माल जैद और फुकारा को दे देना जी। वही जाब्ता शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक अलफुकरा पर क्या दाखिल है? अलिफ लाम। तो इससे जिंस मुराद होगी, और जिंस का इतलाक एक पर भी होता है तो एक फर्द मुराद लेंगे। तो एक जैद हुआ और एक फकीर हुआ, तो कितने हिस्से हो गए? दो दो हिस्से कर देंगे, आधा आधा तकसीम कर देंगे, वो वाला जो सुलुस है, वसीयत वाला सुलुस। और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक फुकारा से कितने मुराद लेंगे? दो। तो गोया उस सुलुस के तीन हिस्से करेंगे, और एक हिस्सा जैद का होगा और दो हिस्से फुकारा के। तो कहते हैं वबी सुलुसिन लहू वलिल फुकाराई, और सुलुस की वसीयत एक शख्स के लिए और फुकारा के लिए, तो निसफुन लहू व निसफुल लहुम, तो निसफ जो है वो उस शख्स के लिए होगा और निसफ फुकारा के लिए होगा। हादा इंदहुमा, ये शेखैन रहिमहुमल्ला के नजदीक है। وعند محمد رحمه الله يقسم الثلث اثلاثا, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक सुलुस को तकसीम किया जाएगा तीन हिस्से करके। वो जो वसीयत वाला सुलुस है उसके तीन हिस्से करेंगे, एक हिस्सा मूसा लहू के लिए और दो हिस्से फुकारा के लिए, अपने अपने असूल और जाब्ते के मुताबिक दोनों ने हुक्म दिया, शेखैन ने भी और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने भी। वबिमी अतिन ले जैदिन वमी अतिन ले आमरीन औ बिहा ले जैदिन व खमसीन ले आमरीन इन अशरा का आखरा मा हुमा। सूरत मसला ये, एक शख्स ने वसीयत की कि मेरे माल में से 100 दिरहम जैद को दे देना और 100 दिरहम अमर को दे देना, और फिर एक तीसरे आदमी को कहा मैं तुमको जैद और अमर के साथ शरीक करता हूं, तो अब कितना हिस्सा मिलेगा? कहते हैं सूरत में जैद अमर और उस आदमी तीनों को सुलुस सुलुस मिल जाएगा। यानी 100 किसके लिए है? जैद के लिए, और 100 किसके लिए है? अमर के लिए। और उस आदमी को इन दोनों के साथ शरीक कर दिया, और शिरकत तकाजा करती है बराबरी का। जब आप कहते हैं मेरे साथ कोई आदमी इस चीज में शरीक है, मालूम हुआ आधा आपका हिस्सा है और आधा उसका हिस्सा है, तो शिरकत बराबरी का तकाजा करती है। तो जब जैद और अमर के साथ उस आदमी को शरीक कर दिया, तो यह तकाजा करता है कि सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए, और उसकी सूरत क्या है कि वो जो 200 है उसके तीन हिस्से कर देंगे, एक सुलुस जैद को, एक सुलुस अमर को, और एक सुलुस उस आदमी को मिलेगा। दूसरी सूरत, जैद के लिए एक शख्स ने वसीयत की इसे 100 दिरहम दे देना, और अमर के लिए वसीयत की कि इसको 50 दिरहम दे देना, और फिर एक आदमी के बारे में कहा कि तुमको मैं इन दोनों के साथ शरीक करता हूं। क्या करता हूं? शरीक करता हूं। अब क्या करेंगे, किस तरह तकसीम करेंगे? कहते हैं अब बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि जैद का हिस्सा है 100 दिरहम, तो अमर का हिस्सा उससे आधा है यानी 50 दिरहम, बराबरी नहीं हो सकती। फिर मुसावात कैसे करेंगे? कहते हैं उसका तरीका यह है कि वो आदमी जैद के साथ भी शरीक हो जाएगा, तो वो जो जैद वाला 100 है आधा आधा दोनों में तकसीम हो जाएगा, और वो आदमी अमर के साथ भी उसके 50 में शरीक हो जाएगा और वो 50 भी आधा आधा हो जाएगा। मालूम हुआ जैद को कितना मिलेगा? 50, और अमर को 50 का आधा यानी 25, और उस आदमी को कितना मिल जाएगा? कुल 75 मिल जाएगा। 50 किससे मिला? जैद से, और 25 किससे मिला? अमर से, तो उसको 75 मिल जाएगा। तकसीम समझ में आ गई? देखिए भाई, कहते हैं वबी मी अतिन ली जैदिन वमी अतिन ली आमरिन, اور 100 کی وصیت زید کے لیے اور 100 کی وصیت عمر کے لیے. او بہا لی زیدین بہا ای بل مئتی, حاضر امیر کس کو راجے مئہ کو, یا مئہ کی وصیت زید کے لیے, و 50 علی عمرین اور 50 کی وصیت عمر کے لیے, ان اشرا کا آخر معہما, اگر شریک کر دیے کسی دوسرے آدمی کو ان دونوں کے ساتھ, فلہ الثلث مال کل فی الاول, اس کے لیے ثلث ہوگا اس کا جو ہر ایک کے لیے ہے پہلی صورت میں, توجہ ہے, اس کے لیے ثلث ہوگا اس میں سے جو ہر ایک کا حصہ ہے. زید کا حصہ کتنا؟ 100, ثلث اس میں سے لے لے گا, اور عمر کا حصہ کتنا؟ 100, ثلث اس کا لے لے گا. تو جب اس نے زید سے ثلث لیا, زید سے 100 کا ثلث لیا, تو زید کے پاس کتنے ثلث رہ گئے؟ 2 ثلث. اور عمر سے بھی جب اس نے ثلث لیا تو عمر کے پاس کتنے رہ گئے؟ 2 ثلث. اور اس کے پاس بھی 2 ثلث ہو گئے, ایک زید سے لیا ایک عمر سے, بات وہی ہے, تینوں میں برابر تقسیم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئے؟ یہ مانا ہے فلہ الثلث مال کل فی الاول, وہ جو ہر ایک کے لیے ہے اس کا ثلث ہوگا اس کے لیے, فی الاول پہلی صورت میں, و نصفہ فی الثانی, اور نصف ہوگا فی الثانی دوسری صورت میں, یعنی ہر ایک کو جو ملا ہے اس کا نصف یہ لے لے گا دوسری صورت میں. زید سے بھی 100 کا نصف لے لے گا اور عمر سے 50 کا نصف لے لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لأن في الصورة الأولى, اس لیے کیونکہ پہلی صورت میں نصیب زید و عمر يتساويان, نصیبین, یہ تسنیہ ہے نون اضافت سے گر گیا, لأن في الصورة الأولى, اس لیے کیونکہ پہلی صورت میں نصیب زید و عمر يتساويان, زید اور عمر دونوں کے حصے برابر ہیں, وقد اشرك آخر معهما, اور موسی نے شریک کر دیا ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی, فهو شریک للاثنين, تو وہ شریک ہوگا دونوں کا, فلہ الثلث مال کل واحد منہما, تو اس کے لیے ثلث ہوگا وہ جو ہر ایک کے لیے ہے ان دونوں میں سے, ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جو ہے اس کا ثلث وہ لے لے گا, یعنی ہر 100 کا ثلث لے لے گا. ولا یمکن مثل ھذا فی الصورۃ الثانیۃ, اور اس کے مثل ممکن نہیں ہے دوسری صورت میں, کیونکہ دو سب کا حصہ برابر نہیں ہے, زید کا حصہ ہے 100 تو عمر کا حصہ ہے 50, تو کہتے ہیں ولا یمکن مثل ھذا فی الصورۃ الثانیۃ, اور ممکن نہیں ہے مثل ھذا اس جیسا, فی الصورۃ الثانیۃ دوسری صورت میں, لتفاوت نصیب زید و عمر, بوجہ مختلف ہونے زید اور عمر کے حصے کے, زید اور عمر کے حصے میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ دوسری صورت میں ممکن نہیں ہے. شرکت کس کا تقاضا کرتی ہے؟ مساوات, اور پہلی صورت میں مساوات ممکن تھی کیونکہ دونوں کا حصہ برابر تھا زید اور عمر کا, اور یہاں دونوں کا حصہ برابر نہیں, لہذا مساوات تو ہو نہیں سکتی, تو لہذا ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ شریک ہو کر اس کا آدھا حصہ لے لے گا بھائی. تو فہو شریک لکل واحد, تو وہ شریک ہو جائے گا ہر ایک کا, فلہ نصف ما لکل واحد منہما, تو اس کے لیے نصف ہوگا وہ جو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے, زید کے 100 کا بھی نصف بھی یہ لے لے گا اور عمر کے 50 کا نصف بھی یہ لے لے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی, وفی لہو علیہ دین فصدقوہ صدق الی الثلث. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے اپنے وارثوں سے کہا, بیمار تھا مرنے والا تھا اس وقت, اس نے اپنے وارثوں سے کہا کہ بھئی زید کا میرے اوپر قرضہ ہے, ہاں لیکن مجھے پتا نہیں ہے کتنا ہے, تو وہ جب آ کر قرضے کا دعویٰ کرے تو تم اس کی تصدیق کر دینا, تم اس کی تصدیق کر دینا. چنانچہ وہ پھر مر گیا, بعد میں زید آیا اور زید نے آ کر کہا کہ یہ جو میت تھی اس نے میرا دین ادا کرنا تھا, تو کہتے ہیں کہ ورثہ اس کی تصدیق کریں گے ثلث تک, ورثہ تصدیق کریں گے ثلث تک, اس کی تصدیق کرنا پڑے گی ان کو. ثلث سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے, لیکن ثلث تک ان کو تصدیق کرنا پڑے گی, ضابطہ سمجھ میں آ گیا, اور اتنا پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا. مثلا مرنے والے کا کل مال ہے 10,000 और उसने आकर क्या कहा कि इसने मेरा 5,000 दिरहम देना है, तो सुलुस 10,000 का जो है उसमें तो तस्दीक करेंगे, जायद में तस्दीक करने में उनकी मर्जी है, वो लाजमी नहीं है उन पर। माना समझ में आ गया? तो जितने में तस्दीक करेंगे वो उसको फिर अदा कर देंगे। मसलन उसका कुल माल जो था वो 9,000 दिरहम था, और वो जो जैद आया उसने आकर कहा कि इसने मेरा 5,000 दिरहम देना है, तो 9,000 का सुलुस तो 3,000 बनता है, तो 3,000 में तो उसकी तस्दीक करेंगे, उससे जायद वारिसों की मर्जी है, तो 3,000 में तस्दीक करेंगे और उसको 3,000 दिरहम दे देंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन उससे जायद देना चाहते हैं, सारा देना चाहते हैं, तो वो वारिसों की मर्जी है भाई। कहते हैं वफी लहू अलैया दैनुन, और इस सूरत में कि उसने कहा लहू के फुला आदमी का अलैया दैनुन, मेरे ऊपर दैन है, फसद्दिकूहु पस तुम लोग उसकी तस्दीक करना, सुद्दिका इला सुलुसी तो उसकी तस्दीक की जाएगी सुलुस तक भाई, कहां तक? सुलुस तक। आई अमर अल वरासता, वसीयत करने वाले ने हुक्म दिया अपने वारिसों को भी आई युसद्दिकु दाइना फी मिकदारी दैनी, कि वो दाइन की तस्दीक करें दैन की मिकदार में, जो कर्जा देने वाला है उसकी तस्दीक करें दैन की मिकदार में, वो जितनी भी मांगे उसको दे देना, लेकिन उन पर लाजिम नहीं है सारा दें। कितने तक तस्दीक करेंगे? सुलुस तक। तो ये जिबू अलैहिम, तो वारिसों पर वाजिब है कि अन युसद्दिकूहु इला सुलुसी, कि वो उस दाइन की तस्दीक करें सुलुस तक। फअस्लुल हक दैनुन, तो असले हक क्या था उस आदमी का? दैन है। असले हक क्या है? दैन है। वह मिकदारुहु यस्बुतु बितरीकिल वसीयती, और उस दैन की मिकदार जो साबित होगी वो वसीयत के तरीके पर साबित होगी। वहाज इस्तेहसानुन, और ये इस्तेहसान है। वल फिल कियास ला युसद्दकु, और कियास के मुताबिक तो उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। लिअन्नल मुद्दईया ला युसद्दकु इल्ला बिहुज्जतिन, इसलिए क्योंकि मुद्दई की तस्दीक नहीं की जाती मगर हुज्जत यानी गवाहों के साथ। भाई देखिए, यहां एक है कियास और एक है इस्तेहसान, और इस्तेहसान को इस्तेहसान कहते ही तब हैं जब इसके मुकाबले में क्या हो? कियास हो। तो यहां कियास मौजूद है। कियास तो तकाजा करता है कि मुद्दई की तस्दीक नहीं करनी चाहिए, उसको एक रुपया भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुद्दई का दावा किससे साबित होता है? बयना से, गवाह लेकर आए, और आने वाला जो जैद था जो कर्जे का दावा कर रहा है उसके पास कोई गवाह मौजूद है? उसके पास कोई गवाह मौजूद नहीं। तो कियास का तकाजा तो यह है कि इसकी तस्दीक करनी ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? गोया वो जो वसीयत करने वाले ने कहा था कि जैद की तस्दीक कर देना देन में, उसका यह हुक्म ही शरीयत के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? शरीयत के अंदर तो मुद्दई के दावे की तस्दीक सिर्फ बयना की सूरत में की जाती है, वैसे तस्दीक नहीं की जाती। लिहाजा कियास ये तकाजा करता है कि ये वसीयत बातिल होनी चाहिए, एक रुपया भी उस दाइन को नहीं देना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन जो है उस दाइन को उसको कर्जा अदा करेंगे और वो रसा पर लाजिम होगा कि वो तस्दीक करें, और तस्दीक में वो सुलुस के पाबंद होंगे कि सुलुस तक तस्दीक उन पर लाजमी है, इससे ज्यादा उन पर लाजमी नहीं, ज्यादा में उनकी मर्जी है भाई। इस्तेहसान यह है कि मालूम हुआ कि वो आदमी अपना देन अदा करना चाहता है ताकि उसकी आखिरत अच्छी हो जाए, लेकिन उस बेचारे को याद नहीं, उसको इतना तो याद है मैंने जैद से किसी जमाने में कर्जा लिया था लेकिन मैंने अदा नहीं किया था, अब उसको भूल गया है और मौत का वक्त करीब है, उसको फिक्र है कि मेरी आखिरत अच्छी हो जाए। चुनांचे उसने अपने वारिसों से कहा कि जैद अगर कर्जा लेने आया तो कर्जे की मिकदार में उसकी तस्दीक कर देना, मैंने उसका कर्जा देना है। तो असले देन तो उसने बता दिया कि हां कर्जा मैंने देना है, लेकिन मिकदार मजहूल है और मिकदार के लिए बयान चाहिए क्योंकि मजहूल पर हमल नहीं हो सकता। तो कहते हैं मजहूल होने में कोई हर्ज नहीं है, बयान वो वरसा से हम करवा लेंगे। उसने असले हक कर्जा तो बतला दिया ना, तो क्या किया जाएगा? असले हक क्या था उसका? कि कर्जा, और कर्जा है इतना तो पता लग गया, मिकदार का पता नहीं, मिकदार मजहूल है, और उस आदमी ने बयान भी नहीं किया कि कितना कर्जा है, और वो मर गया, उसको तो याद ही नहीं है, तो लिहाजा वसीयत मजहूल चीज की हो गई। लेकिन आप पहले पढ़ चुके कि वसीयत मजहूल चीज की भी اسے وصیت پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں ہم کس سے بیان لے لیں گے؟ ورثہ سے بیان لے لیں گے، یعنی وہ تصدیق کریں گے اس کی، اور کتنے تک تصدیق کریں گے؟ ثلث تک. مثلا اس نے کل مال چھوڑا 9,000، اور وہ جو دائن تھا وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ مرنے والے نے میرا 1,000 درہم دینا تھا، یہ تو ثلث سے بھی تھوڑا ہے، اور وہ پابند ہیں کہ کتنے تک تصدیق کریں؟ ثلث تک، تو یہ تو ثلث سے بھی کم ہے، لہٰذا وہ لازم ہے ان پر کہ وہ تصدیق کریں اور 1,000 اس کو ادا کر دیں. اگر وہ 2,000 کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بھی ثلث سے کم ہے، پابند ہیں وہ تصدیق کریں گے اور حوالے کر دیں گے. اگر وہ 3,000 آ کر مانگتا ہے، پابند ہیں یہ ورثہ، یہ تصدیق کریں گے اور اس کو دے دیں گے. لیکن اگر وہ 3,000 سے زیادہ کا دعویٰ کرتا ہے تو ورثہ کے لیے اس سے زیادہ دینا ان پر لازم نہیں، مرضی ہے دینا چاہیں دے دیں، لیکن 3,000 تک وہ تصدیق کریں گے اور وہ اس کو دے دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قیاس کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ یہ بغیر گواہوں کے اس کی تصدیق ہی نہ کی جائے، کچھ بھی اس کو نہیں ملنا چاہیے. تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ وصیت ہی باطل ہونی چاہیے، کیونکہ مجہول چیز کی وصیت کر رہا ہے اور خلاف شریعت ایک حکم دے رہا ہے کہ بینہ کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دینا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن استحسانن تصدیق کریں گے، کیونکہ وہ شخص کیا چاہتا ہے؟ دین ادا کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت اچھی بنانا چاہتا ہے. چنانچہ اس نے دین تو بیان کر دیا لیکن دین کی مقدار اس کو یاد نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ بیان کس کے ذریعے آ جائے گا؟ وارثوں کے ذریعے، وارث اس کی تصدیق کر دیں گے. اصل دین تو کس نے بیان کر دیا؟ میت نے، کہ دین ہے میرے اوپر، صرف مقدار مجہول ہے، کوئی حرج نہیں. مقدار کون بیان کر دیں گے؟ وارث جو تصدیق کر دیں گے. جب وہ آئے گا آ کر کہے گا اس نے میرا 1,000 دینا تھا، وارث نے تصدیق کر دی، کوئی وارثوں نے بیان کر دیا کہ ہاں جی 1,000 دینا تھا، اس نے آ کر کہا 2,000 دینا ہے، تو وارثوں نے تصدیق کر دی، دیکھو بیان آ گیا. اور اگر 3,000 سے زیادہ تھا پھر اس میں وارثوں پر تصدیق واجب نہیں، زائد کی ثلث تک وہ دے دیں گے اس کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ استحسانن ہے تاکہ اس کا قرضہ اتر جائے، آخرت اس کی آسان ہو جائے. ای امر الورثہ بی ان یصدق الدائن فی مقدار الدین، یعنی موسی نے حکم دیا اپنے وارثوں کو کہ وہ تصدیق کریں دائن کی، دین کی مقدار میں. یجب علیہم ان یصدقوہ الی الثلث، تو واجب ہے وارثوں پر کہ وہ تصدیق کریں اس دائن کی ثلث تک. فاصل الحق دین، تو اصل حق جو تھا وہ تھا دین تھا، اور وہ دین تو کس سے پتہ لگ گیا؟ وصیت کرنے والے نے بتلا دیا. وہ مقدار ہو یسبت بطریق الوصیتی، اور اس دین کی مقدار ثابت ہو جائے گی وصیت کے طریقے پر، یعنی ثلث تک. کس کہاں تک؟ کیونکہ وصیت بھی کتنے میں نافذ ہوتی ہے؟ ثلث میں. تو اس دین کی مقدار جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی وصیت کے طریقے پر. وہاں استحسان، اور یہ استحسان ہے. وہ فی القیاس لا یصدق، اور قیاس کے مطابق تو تصدیق نہیں کرنی چاہیے. لان المدعی لا یصدق الا بحجت، اس لیے کیونکہ مدعی کی تصدیق نہیں کی جاتی مگر بینہ کے ساتھ. آگے دیکھیے بھائی، فَإِنْ أَوْصَى مَعَ ذَلِكَ عُزِلَ ثُلُثٌ لَهَا وَثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے، جیسے ابھی پیچھے ذکر ہوا، ایک شخص نے موت سے پہلے اپنے وارثوں کو حکم دیا کہ میں نے زید کا دین ادا کرنا ہے لیکن مجھے یاد نہیں کہ دین کتنا ہے، جب وہ آ جائے تو اس کی تصدیق کر دینا اور دین کی ادائیگی کر دینا. پچھلے مسئلے میں وارثوں کا تصدیق کرنا کتنی مقدار تک لازم تھا؟ ثلث تک. اب اس مسئلے میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے یہ تصدیق کرنے کا حکم بھی دیا ہے، مقدار دین کی مجہول ہے، اور ساتھ ساتھ اس شخص نے اور وصیتیں بھی کی ہوئی ہیں کہ مثلا میرے مرنے کے بعد میرے مال کا ثلث بکر کو دے دینا. تو اب وہ دائن کی تصدیق کرنے کا بھی کہہ رہا ہے، اس کا بھی حکم دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے ثلث مال کی وصیت بھی کی ہوئی ہے. اب کیا کریں گے بھائی؟ پہلے تو تھا ہم ثلث تک وہ نافذ کر دیتے تھے، لیکن اب تو اس نے ثلث کی علیحدہ سے وصیت کی ہوئی ہے باقاعدہ. تو کہتے ہیں اس کی صورت پھر یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ترکے کے ثلث کے اندر وصیت نافذ کرتے ہیں، اور دو ثلث جو ہوتا ہے وہ وارثوں کا ہوتا ہے. सुलुस में वसीयत नाफिज की जाती है और दो सुलुस किसको दिए जाते हैं, वारिसों को दिए जाते हैं। तो लिहाजा यहां पर अब यूं करेंगे कि उसने देन की तस्दीक का कहा है लेकिन देन की मकदार मजहूल है। अलबत्ता वसीयत और वारिसों का हिस्सा मालूम है, वारिसों का हिस्सा है दो सुलुस और वसीयत वाले का हिस्सा है एक सुलुस। लिहाजा यूं करेंगे ये जो तरके का माल है इसके दो हिस्से कर देंगे, अलहदा कर देंगे। एक सुलुस जो वसीयत वाले यानी मूसा लहुम का हक है उसको अलग कर देंगे और जो दो सुलुस वारिसों वाला है उसको अलग कर देंगे। ये अलग कर दिया। अब उसके बाद जब वो देन वाला आएगा और दावा करेगा कि इसने मेरा देन देना था, तो अब देखो यहां जो माल के हिस्सेदार हैं पहले सिर्फ वारिस थे, पिछले मसले में तरके के हकदार कौन थे, सिर्फ वारिस थे, उन्होंने तस्दीक की थी। लेकिन यहां पर अब तरके के अंदर मूसा लहुम यानी जिनके लिए वसीयत की है उनका भी हिस्सा है एक सुलोस और वारिस भी हैं उनका भी हिस्सा है दो सुलोस। तो आप दोनों से तस्दीक करवाएंगे, दोनों से क्या करवाएंगे, और दोनों से जब हम तस्दीक करवाएंगे तो ये ना हो बातों के अंदर उनके तजाद आ जाए। मसलन वो जो मुद्दाई था उसने वो आया और उसने कहा कि ये जो मरने वाला था इसने मेरा 5,000 दिरहम कर्जा देना था, और वो जो वरसा हैं वो कहें नहीं जी 5,000 नहीं देना था, 2,000 दिरहम कर्जा देना था, हम 2,000 की तस्दीक करते हैं। और वो जो मूसा लहुम है हो सकता है वो कहें नहीं जी 1,000 सिर्फ कर्जा देना था। तो दोनों में इख्तिलाफ का भी इहतमाल है, तस्दीक दोनों से करवानी है क्योंकि तरके में दोनों का हिस्सा है। फर्क समझ में आ रहा है, तरके में चूंकि दोनों का हिस्सा है अब तस्दीक दोनों से करवाएंगे और फिर उसके मुताबिक देन की अदायगी करेंगे। लेकिन चूंकि हिस्सेदार दो किस्म के लोग हैं तो पहले दोनों का हिस्सा अलग करवा देंगे, क्योंकि अगर इकट्ठी तस्दीक करवाएंगे फिर तो ये ना हो इख्तिलाफ आ जाए दोनों के अंदर, एक किसी मिकदार में तस्दीक करे दूसरा किसी मिकदार में तस्दीक करे, फिर फैसला कैसे करेंगे हम। लिहाजा यूं करो दोनों का हिस्सा ही अलग कर दो। मूसा लहुम यानी जिनके लिए वसीयत की थी यानी मसलन बकर है या और भी साथी थे उनके लिए उसने जिस सुलुस की वसीयत की है उसको अलग कर दो और वारिसों के दो सुलुस अलग कर दो। अब वो आया और उसने आकर दावा किया कि मसलन ये मरने वाले ने मेरा 5,000 दिरहम देन देना था, तो अब मूसा लहुम जिनका सुलुस है उनसे अलग तस्दीक करवाएंगे और वारिसों से अलग तस्दीक करवाएंगे। मूसा लहुम से कहा जाएगा हां भाई ये 5,000 देन का दावा कर रहा है, आप कितने में तस्दीक करते हैं इसकी, क्या आपको पता है। हो सकता है उनमें से किसी को पता हो कि मरने वाले ने इतना कर्जा लिया था, इसी तरह वारिसों से भी अलग तस्दीक करवाएंगे। हो सकता है वारिसों में से किसी को पता हो कि उसने कितना कर्जा लिया था, तो पहले मूसा लहुम जिससे भी पहले तस्दीक करवा लें तो मूसा लहुम से पहले तस्दीक करवाएंगे कि हां भाई ये 5,000 देन का दावा कर रहा है, आपको इलम है देन का, आप कितने में इसकी तस्दीक करते हैं। तो मसलन वो कहते हैं कि नहीं भाई 5,000 देन नहीं है, इसका देन सिर्फ 1,000 दिरहम है। कितना है? 1,000 दिरहम है। तो याद रखो जब इन्होंने 1,000 की तस्दीक कर दी तो अब इसको इन्हें अदा करना पड़ेगा। मूसा लहुम जिनके लिए वसीयत की थी उन्होंने अब क्या करना है, अदा करना है। और ये जो 1,000 की तस्दीक कर रहे हैं वो कर्जे की, ये 1,000 सारा इस सुलुस में आएगा जो इनका अलहदा हिस्सा है या पूरे माल में से आएगा। भाई कर्जा तो कर्जा मतलब 1,000 की जो तस्दीक करें कर्जा तो सारे माल में से लिया जाता है ना, सिर्फ इस सुलुस में से तो नहीं है कर्जा। तो मालूम हुआ इनका हिस्सा कितना है सुलुस और ये तस्दीक कितने की कर रहे हैं 1,000 की, तो इनके हिस्से में से 1,000 का सुलुस इनसे ले लेंगे। इनका हिस्सा कुल तरके का कितना था सुलुस, तो कर्जे का भी इस पर कितना हिस्सा आएगा एक सुलुस, और दो सुलुस किस पर आएगा वारिसों पर आएगा क्योंकि दो सुलुस उनके पास हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे इससे, जितने की इन्होंने तस्दीक कर दी, मसलन इन्होंने 1,000 की तस्दीक कर दी कि कर्जा 1,000 दिरहम था, तो इस 1,000 का सुलुस इनके सुलुस में से लेकर दे दिया जाएगा दाइन को। और फिर जो वारिस थे वारिसों से तस्दीक करवाएंगे कि भाई ये 5,000 देन का दावा कर रहा है, क्या तुम्हें कोई इलम है कितना कर्जा लिया था मरने वाले ने। वो कहते हैं जी कर्जा 2,000 दिरहम था। कितना था? तो इनके साथ जिसकी ये तस्दीक करें उसका मामला करेंगे। मूसा लहुम ने जितने की तस्दीक की थी वो सारा उन पर आया, उसका सुलूस आया, उसका सुलूस आया था। तो अब जितने की उन्होंने तस्दीक की थी उसको नहीं देखना, वो उन्होंने अपने हक में तस्दीक की थी। अब वारिसों से अलहदा तस्दीक करवाएंगे कि आप कितने की तस्दीक करते हैं, ये 5,000 का दावा कर रहा है। तो मसलन वो कहते हैं जी हम 2,000 की तस्दीक करते हैं, 2,000 कर्जा था हमारे इलम के मुताबिक, इससे ज्यादा नहीं था। तो ये जो 2,000 है ये सारा वारिसों से नहीं लेंगे, वारिसों के पास तो माल का कितना हिस्सा आया है, दो सुलुस आया, तो इन पर कर्जे का भी दो सुलुस आ जाएगा। यानी ये जिस 2,000 की ये तस्दीक कर रहे हैं उस 2,000 के तीन हिस्से कर देंगे, और उस तीन में से दो हिस्से जो हैं वो इन वारिसों पर आ जाएगा। सूरत समझ में आ गई। हासिल कलाम फिर सुन लें कि एक शख्स ने मरने से पहले अपने वारिसों से कहा कि फला शख्स का मैंने देन देना है, वो आ जाए तो उसकी तस्दीक कर देना। तो इस सूरत में वारिस जो है वो सुलुस तक उसकी तस्दीक के पाबंद होते हैं, आपने पिछले मसले में पढ़ा। लेकिन यहां उसने वसीयत भी कर रखी है सुलुस माल की, तो गोया अब तस्दीक सिर्फ वारिसों से नहीं करवानी बल्कि मूसा लहुम जो है जिनके लिए वसीयत की है सुलुस माल की उनसे भी तस्दीक करवानी है। तो वारिसों से भी तस्दीक करवानी है और मूसा लहुम से भी, तो यह ना हो कहीं दोनों आपस में इख्तिलाफ करें, फिर अदायगी में दुश्वारी होगी। लिहाजा अभी से क्या कर दो, दोनों के हिस्से अलग कर दो। एक सुलुस किसको दे दो, देना नहीं, एक सुलुस अलहदा कर दो किसका, मूसा लहुम का, और दो सुलुस किसके अलहदा कर दो, वारिसों के। फिर जब वो दाइन आया उसने कर्जे का दावा किया तो फिर मूसा लहुम से अलग कहा जाएगा कि ये इतना दावा कर रहा है, आप कितने की तस्दीक करना चाहते हैं। फिर जितने की वो तस्दीक कर दें उसका सुलुस इनसे ले लिया जाएगा, इनके माल में से, इनके माल में से उसका सुलुस ले उसको दे देंगे, चाहे सारा सुलुस ही क्यों ना उसके अंदर खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है, उसका सिर्फ सुलुस इनके माल में से ले लेंगे। फिर उसके बाद वारिसों से अलहदा तस्दीक करवाएंगे कि आप कितने में तस्दीक करते हैं। फिर जितने की वो तस्दीक करें उस तस्दीक शुदा के दो सुलुस किसके हिस्से में से ले लिए जाएंगे, वारिसों के हिस्से में से लेकर उसको अदा कर दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई। और अगर उसका दावा जायद था, जैसे मैंने अभी मिसाल जिक्र की कि वो 5,000 का दावा कर रहा है और ये कितने में तस्दीक कर रहे हैं, 2,000 में, तो फिर इस सूरत में याद रखो कसम भी खिलवाई जाएगी मूसा लहुम को भी और वारिसों को भी। फर्ज करो अगर वो आया था और उसने कहा था जी कि मेरा देन ही 1,000 है और कुल माल उसने छोड़ा है 6,000, कितना माल छोड़ा है 6,000 में से 2,000 किसका हिस्सा अलहदा कर लिया हमने, मूसा लहुम का, और 4,000 दो सुलुस वो जो है वो किसका हिस्सा अलहदा कर लिया, वारिसों का, तो अब मूसा लहुम का हिस्सा है 2,000। अब वो दाइन आया और उसने आकर कहा जी कि मेरा कर्जा तो 1,000 दिरहम था, कितना था
1,000,
और अब हमने सबसे पहले किससे पूछना है, मूसा लहुम से, और फिर किससे पूछना है, वारिसों से। तो मूसा लहुम से हमने पूछा कि ये 1,000 देन का दावा कर रहा है, आप कितने में तस्दीक करते हैं, उन्होंने कहा हम सारे में तस्दीक करते हैं, 1,000 दिरहम तो था, चुनांचे पूरा 1,000 उनसे नहीं लेंगे बल्कि 1,000 का सुलुस ले लेंगे, वो अदा कर देंगे और बाकी इनका हो गया। और बाकी फिर वारिसों के पास आए, वारिसों को भी कहा ये कितने का दावा कर रहा है, 1,000 का, तो उन्होंने कहा हां ठीक है 1,000 में हम भी तस्दीक करते हैं। चुनांचे वारिसों के जो 4,000 हैं उसमें से बाकी उसके कर्जे 1,000 के जो दो सुलुस बाकी हैं वो उनको अदा कर देंगे। सूरत समझ में आ गई। और अगर उसने ज्यादा का दावा किया था, जैसे मैंने मिसाल जिक्र की 5,000 का मसलन उसने दावा किया है, तो अब मूसा लहुम के पास आए और उनसे कहा आप कितने में तस्दीक करते हैं, ये दावा तो 5,000 का कर रहा है, उन्होंने कहा नहीं 5,000 नहीं 3,000 देन था, कितना था 3,000, तो इस 3,000 का सुलुस कितना बनता है 1,000, ये मूसा लहुम से ले के हिस्से में से लेकर उनको दे दिया जाएगा। और दावा तो ज्यादा का है और ये तस्दीक कम की कर रहे हैं तो फिर उनसे कसम भी ली जाएगी, क्योंकि जायद का गोया वो इनकार कर रहे हैं, 5,000 में से 3,000 का वो इकरार कर रहे हैं और 2,000 का इनकार कर रहे हैं। और मुद्दई के जिम्मा होता है बयना और मुनकिर के जिम्मे होती है कसम, तो दाइन तो है मुद्दई, उसके पास तो गवाह कोई नहीं, तो लिहाजा अब इनको कसम खिलवाएंगे। जो मुनकिर है मूसा लहुम वो कितने की तस्दीक कर रहे हैं 3,000 की, और दावा कितने का है 5,000, गोया 2,000 का वो इनकार कर रहे हैं, 2,000 का, तो वो मुनकिर हुए और मुनकिर पर क्या आती है कसम, लिहाजा उनसे कसम खिलवाई जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कसम खिलवाएंगे। लेकिन याद रखना, यहां कसम जो है वो कतई कसम नहीं खिलवाएंगे, बल्कि इलम पर कसम खिलवाएंगे। मतलब उनको ये नहीं कहेंगे कि कसम उठाओ 3000 से ज्यादा कर्जा नहीं था, नहीं, ये कसम नहीं खिलवाएंगे, बल्कि ये कसम खिलवाएंगे कि तुम कसम उठाओ कि तुम्हें 3000 से ज्यादा कर्जे का इलम नहीं है। ये कसम नहीं खिलवाएंगे कि कसम उठाओ कि इससे ज्यादा कर्जा नहीं था, ये नहीं कसम उठवाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्जा इन्होंने नहीं लिया, कर्जा मैयत ने लिया था भाई। अगर इन्होंने कर्जा लिया होता फिर तो हम ये कसम खिलवाते कि कसम खाओ इतना कर्जा था या कर्जा नहीं था। अपने फेल पर जब कसम उठाता है इंसान तो वहां तो फिर नफी पे कसम उठा लेता है कि अल्लाह की कसम ऐसा नहीं था। लेकिन जब दूसरे के बारे में कसम उठाता है वहां तो सिर्फ अपने इलम पर कसम उठा सकता है कि वल्लाह मेरे इलम के मुताबिक इससे ज्यादा कर्जा नहीं था भाई, मेरे इलम, क्योंकि मैंने खुद ये कर्जा नहीं लिया। कर्जा तो किसने लिया था? मैयत ने लिया था, लेकिन हमारे इलम के मुताबिक इससे ज्यादा देन नहीं था भाई। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा यहां अगर जायद की जायद का दावा है तो फिर उसकी नफी पर कसम भी खिलवाएंगे, लेकिन कसम इनके फेल की नफी पर नहीं खिलवाएंगे, क्योंकि फेल तो इनका है ही नहीं, फेल तो मैयत का है। फिर किस चीज पर कसम खिलवाएंगे? इनके इलम की नफी पर कसम खिलवाएंगे कि कसम उठाओ तुम्हारे इलम के मुताबिक इससे ज्यादा कर्जा नहीं था भाई। चुनांचे वो दे देंगे। फिर उसके बाद वारिसों के पास आए भाई, और फिर वारिसों से कहा कि वो मसलन कितना कर्जा, कितना दावा कर रहा है? 5000 का, तुम कितने की तस्दीक करते हो? उन्होंने भी जितनी मकदार में तस्दीक कर दी उसका 2/3 दे देंगे, और फिर बाकी अगर जायद है तो इनसे कसम खिलवाएंगे कि तुम कसम उठाओ अपने इलम की, अपने इलम पर कि हमें इससे ज्यादा कर्जे का इलम नहीं है भाई। सूरत समझ में आ गई? तो चुनांचे जितने में वो तस्दीक करें मूसा लहुम से उसका 1/3 दिला देंगे, और वारिस जितने में तस्दीक करें उसके 2/3 वारिसों से उसको दिलवा देंगे। सूरत समझ में आ गई? देखिए भाई, कहते हैं फइन औसा माजालिका, अगर उसने वसीयत भी की माजालिका उस देन के साथ, पिछले मसले में उसने किस चीज की तस्दीक का हुक्म दिया था? देन की। तो मा जालिका, जालिका से इशारा है उस देन की तरफ। फइन औसा मा जालिका, अगर उस शख्स ने वसीयत भी की उस देन के साथ साथ, तो उजिला सुलुसुन लहा, तो जुदा कर दिया जाएगा 1/3 लहा अलिल वसीयति। हाजमीर किसको राजे? वसी। तो 1/3 जो है वो जुदा कर दिया जाएगा वसीयत की वजह से, क्योंकि 1/3 में क्या नाफिज करनी है? वसीयत। तो 1/3 जुदा कर दिया जाएगा तरके में से वसीयत के लिए। वसुलुसाहु लिल वरासती, और उस तरके के 2/3 जो है वो वारिसों के होंगे। यानी अभी देने नहीं है, सिर्फ जुदा कर दिए, क्योंकि अभी हमने इसमें से देन की अदायगी करनी है। फिर उसके बाद तरका वारिसों के हवाले करेंगे और वसीयत मूसा लहुम के हवाले करेंगे। अभी सिर्फ हमने अलहदा अलहदा कर दिए। उजिला सुल, देखा उजिला, जुदा कर दिया जाएगा। सुलुसुन लहा, सुलुस तरके की वजह से। वसुलुसाहु लिल वरासती, और 2/3 वारिसों के लिए। वकील लिकुल्लिन, और फिर इनमें से हर एक को कहा जाएगा, यानी वारिसों को भी कहा जाएगा और मूसा लहुम को भी कहा जाएगा। सद्दिकूहु फी माशितुम, कि तुम इस दाइन की तस्दीक करो, फी माशितुम जितने में तुम चाहो, जितनी मकदार तुम्हारा दिल करे उसकी तस्दीक कर दो। वयुखदुसुलुसी बिसुलुसी मा अकर्रु बिही, और माखूज होगा, युखजु माखूज यानी जिम्मेदार होगा, जुसुलुसी तीसरे हिस्से वाला। तीसरे हिस्से वाला कौन है? मूसा लहुम। वो जिम्मेदार होगा बिसुलुसी मा अकर्रु बिही, उसके सुलुस का जिसका उन्होंने इकरार किया। उन्होंने 1000 का इकरार किया तो सारा 1000 नहीं लेंगे बल्कि 1/3 लेंगे, क्योंकि इनको माल में से 1/3 मिला है। वमा बकिया फलहुम, तो 1/3 दे देंगे, और जो 1/3 के बाद बाकी बच गया 1/3 में से, फलहुम वो मूसा लहुम। मूसा लहुम के लिए हमने माल का कितना हिस्सा अलहदा किया था? 1/3। इस 1/3 में से इन्होंने दाइन की तस्दीक कर दी 1000 में से, और जितने की तस्दीक की उसका 1/3 किसको दे दिया? दाइन को दे दिया, उतना दाइन को दे देंगे और जो बाकी बचेगा वो फिर किसका रह जाएगा, वो अब मूसा लहुम को दे देंगे। ये बात कर रहे हैं, वह मा बकिया फलहुम, और वो जो बाकी बच जाएगा सुलुस में से तो वो मूसा लहुम का होगा। वल वरासतु बिसुलुसै मा अकर्रु बिही, और वारिस जो होंगे वो जिम्मेदार होंगे दो सुलुस का जिसका वो इकरार करें, जिसका वो इकरार करें उसके दो सुलुस के वो जिम्मेदार होंगे, वो उनके हिस्से में से दिया जाएगा। वह युहल्लफु कुल्लुन अलल इल्मी बिदावत ज़ियादती, और कसम खिलाई जाएगी। हल्लफा युहल्लफु तहलीफ का माने दूसरे को कसम खिलाना, और कसम खिलाई जाएगी कुल्लुन हर एक को, यानी मूसा लहुम को भी और वारिसों को भी, इनको कसम खिलाई जाएगी। अलल इल्मी, किस चीज पर कसम? इलम पर कसम खिलवाई जाएगी, फेल पर कसम नहीं, क्योंकि वो कर्जा लेने का फेल इन्होंने नहीं किया, तो इलम पर कसम खिलवाई जाएगी। बिदावत ज्यादती, ज्यादती के दावे की सूरत में, जब इसने ज्यादा जितने की वो तस्दीक कर रहे हैं उस तस्दीक से ज्यादा का उसने दावा किया है, तो इस सूरत में फिर इनको कसम भी खिलवाएंगे इनके इलम पर। भाई बात समझ में आ गई। ऐ औसा मअदालिक दैन, यानी वसीयत की, वसीयत करने वाले ने उस दैन के साथ, वो दैन अल्लदी अमरा बि तस्दीकी मकदार ही, जिसका उसने हुक्म दिया था उसकी मकदार की तस्दीक करने का। तर्जमा समझ में आ रहा है, फिर सुने। ऐ औसा मअदालिक दैन अल्लदी अमरा बि तस्दीकी मकदार ही, यानी उसने वसीयत की उस दैन की, उस देन के साथ जिसकी मकदार की तस्दीक का उसने हुक्म दिया था। बिसुलुसी माली ही लिकौमिन, क्या वसीयत की? बिसुलुसी माली ही लिकौमिन, अपने सुलुस माल की कुछ लोगों के लिए। तो यो अजलु सुलुसुल माल लिल वसीयती, तो जुदा किया जाएगा सुलुस माल वसीयत के लिए। व सुलुसान लिल वरासती, और दो सुलुस वारिसों के लिए। वकील अलिल मूसा लहुम, और मूसा लहुम से कहा जाएगा सद्दिकूहु फी माशितुम, कि तुम इस दाइन की तस्दीक करो जितनी मकदार में तुम चाहो, जितनी मकदार में चाहते हो इसकी क्या कर दो, तस्दीक कर दो। फईदा अकर्रू बिमकदारिन, जब वो इकरार कर लें किसी मकदार का। फसुलुसु जालिकल मकदारी यकूनु फी हक्किहिम, तो सुलुस उस मकदार का जो है वो इनके हक में से होगा, वो जो उन्होंने इकरार किया उसका सुलुस इनके हक में से ले लेंगे। और इनका हक कितना है? कहते हैं वह सुलुसुल माली, वो सुलुस माल है। इनका हक चूंकि सुलुस माल, तो कर्जे का भी इनके माल में से सुलुस दिलाया जाएगा इनको। वमा बकिया मिना सुलुसी फलिल मूसा लहुम, और उस सुलुस में से फिर जो बाकी बच गया वो मूसा लहुम का है। बात समझ में आ गई। वह युकाल उलिल वरासती, और वारिसों से कहा जाएगा सद्दिकूहु फी माशितुम, कि तुम इस दाइन की तस्दीक करो जितनी मकदार में तुम चाहो। फईदा अकर्रू बिशयइन, जब वो इकरार कर लें किसी चीज का। फसुलुसा जालिका शयइ यकूनु फी हक्किहिम, तो उस चीज के दो सुलुस जो हैं इन वारिसों के हक में से लेंगे। वह और इनका हक कितना है? वह हुआ सुलुसल माली, वो भी वो दो सुलुस है। जब इनका हिस्सा दो सुलुस, तो कर्जे का भी हिस्सा इन पर दो सुलुस ही आएगा। वल बाकी लिल वरासती, और जो बाकी बचेगा वो वारिसों का होगा। वहुल्लिफा कुल वाहिदी मिनल मूसा लहू वल वरासती अलल इल्मी, और कसम खिलाई जाएगी हर एक को मूसा लहू और वारिस में से, इनमें से हर एक को कसम खिलाई जाएगी। अलल इल्मी, इनके इलम पर। बिदावत ज्यादती, जायद के दावे की सूरत में, जब जायद का दावा हो फिर इनके इलम पर इनसे कसम खिलवाई जाएगी, कि वो कसम उठाएं कि वल्लाह ये जो कर्जा था उनके इलम के मुताबिक इससे ज्यादा नहीं था। भाई बात समझ में आ गई। व बिआइन इन लिवारिसिन व अजनबीन लहू निस्फुन व खाबल वारिसु। सूरत मसला ये, एक शख्स ने वसीयत की कि मसलन ये 10 लाख रुपया जैद को और मेरे बेटे को दे देना। 10 लाख रुपया मुअय्यन मकदार, किसके लिए वसीयत की? जैद जो एक अजनबी है, और अपने बेटे के लिए जो कि इसका वारिस है। तो अब ये 10 लाख कैसे तकसीम करेंगे? कहते हैं भाई हम आपको पहले जाब्ता बता चुके हैं कि वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं, लिहाजा ये 10 लाख उन दोनों का हिस्सा बनता है, वारिस का भी और अजनबी का भी, लेकिन वारिस को तो हम दे नहीं सकते, तो लिहाजा अजनबी को आधा हिस्सा दे देंगे और वारिस को कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। बात समझ
जी
में आ
सर,
गई? तो कहते हैं, वबी आइन इन ली वारिस इन व अजनबी इन, किसी मुअय्यन चीज की वसीयत वारिस के लिए और अजनबी के लिए की, तो इस सूरत में लहू निस्फ़ुन, उस अजनबी के लिए उस मुअय्यन मिकदार का निसफ होगा। व खाबल वारिसु, खाब यखीबु खैबतन का माना है महरूम होना। व खाबल वारिसु, और वारिस जो है वो महरूम होगा। कहते हैं, वह इन्नमा यकूनु लिल अजनबी ये निसफ। ये एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये कि पिछले मसले में आपने बतलाया था एक शख्स ने वसीयत की जैद और अमर के लिए, और अमर मर चुका है, तो आपने कहा था सारा सुलुस किसको दे दो, जैद को दे दो। और वहां आपने क्या कहा था कि चूंकि मैयत अहल नहीं है वसीयत की, तो मैयत का अदम है, उसको शुमार ही नहीं करेंगे, और यूं समझेंगे सारे सुलुस की वसीयत गोया जैद के लिए की है। और यहां पर भी इसी तरह है, वारिस जो है वो वसीयत का अहल नहीं है, तो लिहाजा सारा वो माल किसको मिलना चाहिए वसीयत वाला, उस अजनबी को। तो जवाब देंगे कि नहीं भाई, कि मैयत तो अहल नहीं है वसीयत की, लेकिन वारिस तो अहल है। वारिस क्या है? वसीयत का अहल है, लेकिन वारिस होने की वजह से मुमानअत आ गई, क्योंकि वारिस जिंदा तो है ना, जिंदा इंसान, लेकिन चूंकि वो वारिस बन रहा है ये मानेअ आ गया, इसलिए इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अहलियत है लेकिन मानेअ आ गया, और मैयत में तो सिरे से अहलियत ही नहीं थी, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग सूरतें हैं। तो कहते हैं, वह इन नमा यकून लिल अजनबी ये निसफ, कहते हैं अजनबी के लिए निसफ होगा। ले अन अलवारिस अहलुल वसीयती, इसलिए क्योंकि वारिस जो है वो वसीयत का अहल है। बिखिलाफ मा इदा औसा बिही लिल हय्य वल मय्यती, बखिलाफ उसके जब वसीयत की एक जिंदा और एक मुर्दा के लिए। फइन अल मय्यत लैस बि अहलिन, क्योंकि मय्यत जो है वो तो अहल नहीं है भाई। बात समझ में आ गई? तो वारिस अहल है, चुनांचे इसीलिए याद रखो वारिसों में माल तकसीम करते हैं तो कुछ वारिस महरूम हो जाते हैं। कुछ वारिस क्या हो जाते हैं? महरूम। मसलन एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके बेटे भी मौजूद और बाप भी मौजूद और भाई भी मौजूद, तो याद रखो बेटे और बाप के होते हुए भाइयों को कुछ नहीं मिलता। हां, अगर बेटे और बाप न होते, बाप दादा परदादा ऊपर तक और नीचे बेटा पोता पड़पोता नीचे कोई भी ना होता, कोई मुजक्कर ना नीचे की तरफ होता ना ऊपर की तरफ, फिर भाइयों को मिलना था माल। तो भाई वारिस तो हैं लेकिन इस वक्त उनको हिस्सा मिल रहा है जब बाप बेटा मौजूद हो, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वारिस हैं। शरीयत उनको वारिस बनाती है या नहीं बनाती बासूरतों में? तो यहां रुकावट आ गई, रुकावट न आती तो इन्होंने वारिस बनना था और इनको भी हिस्सा मिलना था। तो ऐसा वारिस जो महरूम हो रहा हो उसके लिए वसीयत जायज है, उसके लिए वसीयत जायज है। हां, जिसको हिस्सा मिलना है उसके लिए वसीयत जायज नहीं है। तो भाई अगर महरूम हो रहे हैं और मरने वाला उनको कुछ माल देना चाहता है तो वसीयत करके दे सकता है भाई। सूरत समझ में आ गई? वह बिसलासती अस्वाबिम मुतफावितिन लिकुल्लि रजुलि। सूरत मसला यह कि एक शख्स ने मरने से पहले वसीयत की 3 मुख्तलिफ किस्म के कपड़े थे, एक कपड़ा आला किस्म का, एक कपड़ा अदना किस्म का और एक कपड़ा मुतवस्सित था। उसने कहा ये जो आला कपड़ा है ये जैद को दे देना, ये जो मुतवस्सित कपड़ा है ये अमर को दे देना, और ये जो अदना दर्जे का कपड़ा है ये बकर को दे देना। फिर उस शख्स का इंतकाल हो गया और वो कपड़े अभी हमने वसीयत वालों को नहीं दिए थे कि उनमें से एक कपड़ा हलाक हो गया, जाया हो गया। अब ये पता नहीं ये कपड़ा कौन सा हलाक हुआ है, आला वाला हलाक हुआ है या मुतवस्सित वाला हलाक हुआ है या अदना वाला। अगर तायीन हो जाए फिर तो पता चल जाएगा कि जैद का हिस्सा हलाक हुआ है या अमर का या बकर का, क्योंकि जैद के लिए सबसे आला वाला है, बकर के लिए सबसे अदना वाला और अमर के लिए मुतवस्सित दर्जे वाला है। तो अगर हमें पता लग जाए फलां किस्म का कपड़ा हलाक हुआ है, सबसे आला हलाक हुआ है, मालूम हो जैद का हिस्सा हलाक हो गया, बाकियों को उनका हिस्सा दे दो। लेकिन अब यहां पता ही नहीं है कि कौन सा कपड़ा हलाक हुआ है, تو اس صورت میں یاد رکھیں. ایک صورت یہ ہے کہ یہ وصیت ہی باطل ہو جائے, اور وہ کیا, مثلا وہ لینے آئے, اپنا حصہ لینے آئے, اب وارثوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا کپڑا کس کا حق ہے, تو زید لینے آیا, انہوں نے کہا بھئی آپ کا حصہ تو ہلاک ہو چکا, ختم ہو چکا. پھر عمر لینے آیا, پھر ان کے ذہن میں آیا شاید اس کا حصہ ہلاک ہوا ہے, اس کو بھی کہا تمہارا حصہ ہلاک ہو چکا. پھر خیال آیا کہ نہیں شاید سب سے ادنا ہلاک ہوا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ بکر لینے آیا, اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارا حصہ ہلاک ہو چکا ہے. تو یاد رکھیے اس صورت میں وصیت باطل ہو گئی, کیونکہ کون سا کس کا حصہ ہے یہ مجہول ہو گیا, اور مجہول ہونے کی وجہ سے آپ کسی کو اس کا حق دینا ممکن نہ رہا, لہذا وصیت باطل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نیک لوگ تھے, انہوں نے کہا بھائی جو کچھ بھی ہو ہمیں تو نہیں پتا چل رہا کون سا کس کا حصہ ہے, لیکن بھائی تینوں آ جاؤ, یہ کپڑے ہیں یہ لے جاؤ بھائی. اب ظاہر سی بات ہے جو دو کپڑے بچ گئے ہیں, ایک دوسرے کی بنسبت ایک اعلی ہوگا اور دوسرا ادنا ہوگا, تو اب تقسیم کیسے کریں گے وہ موسیٰ لہم آپس میں؟ تو کہتے ہیں زید کے لیے چونکہ سب سے اعلی کی وصیت تھی, لہذا ان دو کپڑوں میں سے جو اعلی والا ہے اس کے دو ثلث زید کو دے دیں گے, اور جو بکر ہے اس کے لیے سب سے ادنا کپڑے کی وصیت تھی, تو ان دو میں سے جو ادنا والا ہے اس کے دو ثلث بکر لے لے گا, اور جو عمر ہے اس کے لیے متوسط کپڑے کی وصیت تھی تو وہ ایک ثلث اعلی سے بچ گیا وہ لے لے گا, اور ایک ثلث ادنا سے بچ گیا وہ لے لے گا, تو اس کے لیے متوسط حصہ ہو گیا. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے بھائی, وہ بثلاثۃ اسواب متفاوتۃ لکل الرجل, اور تین مختلف کپڑوں کی, تین مختلف کپڑوں کی وصیت لکل الرجل, ہر آدمی کے لیے, یعنی ہر آدمی کے لیے ایک ایک قسم کی ہے وصیت کی. ان ضاع ثوب, اگر ایک کپڑا ضائع ہو گیا, ولم یدر ایون ہوا, اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا ہے وہ جو ہلاک ہوا ہے, وہ کون سا والا ہلاک ہوا ہے. والورثۃ تقول لکل, اور ورثہ جو ہیں وہ ہر ایک موسیٰ لہم سے کہہ رہے ہیں, تویا حق کا, تویا یتوا کا معنی ہلاک ہونا برباد ہونا, تویا حق کا, تیرا حق برباد ہو گیا ہے ہلاک ہو چکا ہے, تو بطلت, وصیت کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی, کیونکہ حصہ مجہول ہو گیا ہر ایک کا. لیکن ان سلموا ما بقیا, لیکن اگر انہوں نے سپرد کر دیا وہ حصہ جو باقی ہے, یعنی باقی دو کپڑے, اخذ ذو الجیدی, عمدہ حصے والا, یعنی کون تھا وہ, زید لے لے گا سلوسیل اعزی, جو اعلی کپڑا ہے اس کے دو سلوس لے لے گا. اعز کیا مانا, جو زیادہ عمدہ ہے اعلی ہے, اس کے دو سلوس لے لے گا. وزر ردی, اور وہ جو ردی حصے والا تھا یعنی بکر, وہ لے لے گا سلوسیل اخسی, جو سب سے خصیص اور سب سے گھٹیا کپڑا ہے اس کے دو سلوس لے لے گا. ان دو کپڑوں میں سے جو زیادہ خصیص ہے اس کے دو سلوس بکر لے لے گا. ودل متوسط سلوسا کل لین, اور متوسط حصے والا جو تھا, متوسط کپڑے والا جو تھا, وہ سلوسا کل لین, وہ دونوں کپڑوں میں سے ہر ایک کا سلوس لے لے گا. دیکھیے خود تقریر کریں گے. ای اوصا بثلاثۃ اسواب متفاوتۃ, ایک شخص نے وصیت کی تین مختلف قسم کے کپڑوں کی, جیدوں و متوسطوں و ردیئن, وہ تین قسم کے کپڑے کیا ہیں, جیدن عمدہ ہے, و متوسطن, اور ایک متوسط ہے, و ردیئن, اور ایک ردی ہے یعنی گھٹیا ہے ادنا ہے. وقالا, اور اس نے کہا, الجید لزید, کے جید جو ہے وہ عمدہ جو ہے وہ زید کے لیے ہے, والمتوسط لعمر, اور متوسط کپڑا عمر کے لیے ہے, والردی لبکر, اور ردی کپڑا جو ہے وہ بکر کے لیے ہے. فہلک واحد, تو ان میں سے ایک کپڑا ہلاک ہو گیا ضائع ہو گیا, ولا یدرا ایون ہوا, اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا والا وہ کپڑا ہے, یعنی کون سا کپڑا ہلاک ہوا ہے عمدہ یا متوسط. والورثۃ تقول لکل واحد, और वारिस जो है वो हर एक से कह रहे हैं हलाका हक्कू का कि आपका हक जो है वो हलाक हो चुका है, फल वसीयतु बातिलतुन, तो वसीयत बातिल है क्योंकि किसी के हक का पता ही नहीं चल रहा, मजहूल हो गया। लाकिन नलवा रसत इन तसामहू, लेकिन वारिसों ने अगर अफ़ो दरगुजर से काम लिया, तसामह कहते हैं चशमपोशी करना, अफ़ो दरगुजर से काम लेना, अगर उन्होंने अफ़ो दरगुजर से काम लिया, व असलमु सौबैनी, असलमु नहीं सल्लमु होना चाहिए, लेकिन बहरहाल दोनों का माना एक ही है, हवाले करना, लेकिन ज्यादातर सल्लमा इस्तेमाल होता है। व असलमु सौबैन अलबाकियैन इला ज़ैद व अम्र व बकरिन, लेकिन उन्होंने अफ़ो दरगुजर से काम लिया और हवाले कर दिया बाकी के दो कपड़ों को ज़ैद अमर और बकर के, तो आखदा ज़ैद सुलुसैल अजवदी मीन सौबैनी, तो ज़ैद ले लेगा वो जो उमदा कपड़ा है उसके दो सुलुस, आखदा ज़ैद ले लेगा ज़ैद सुलुसैल अजवदी मीन सौबैनी, उन दो कपड़ों में से जो उमदा वाला है उसके दो सुलुस वो ज़ैद ले लेगा। वह आखदा बकरुन सुलुसैल रदी, और बकर जो है उस रद्दी कपड़े के दो सुलुस ले लेगा। वह अमरुन सुलुसा कुल्ल वाहिदिन, और अमर जो है इन दोनों कपड़ों का एक एक सुलुस ले लेगा। वह बिबैतिम मुअय्यनि मिंदारिम मुश्तरकतिन कुस्सिमत फइन असाबल मूसी फहुवा लिलमूसा लहू। सूरत मसला ये, एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ मुश्तरका घर था, दोनों का हिस्सा आधा आधा है उस घर के अंदर, तकसीम नहीं की कि कौन सा हिस्सा किसका है, तकसीम करेंगे पता नहीं कौन सा हिस्सा इसके हक में, कौन सा हिस्सा एक को मिलता है और कौन सा हिस्सा दूसरे को मिलता है, कुछ पता नहीं। तो इस वक्त इस हालत में जबकि वो मुश्तरका घर है, एक शख्स वसीयत करता है जैद के लिए कि इस घर का फलां कमरा जो है मेरे मरने के बाद जैद को दे देना। उसके बाद तकसीम की गई घर की, वो हलाक हो चुका, वो फौफात पा चुका, अब उस घर की तकसीम की गई, तो वो जो कमरा है वो उस मूसी के हक में आ गया जिसने वसीयत की थी, तो उसको वो वाला कमरा मिल गया, तो ये कमरा अब जैद को देंगे उसी जिसके लिए उसने वसीयत की थी। बात समझ में आ रही, बशर्ते कि ये सुलुस से निकलता हो, ये तो कैद बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं कि सुलुस से निकलेगा तो देंगे, वैसे नहीं, तो अगर सुलुस से ये कमरा निकल आता है तो ये जैद को दे देंगे। सूरत समझ में आ गए। और अगर ये जो कमरा है ये दूसरे शख्स के हिस्से में चला गया तकसीम के बाद, वसीयत करने वाले के हिस्से में आया ही नहीं, तो फिर ये माना नहीं कि उसकी वसीयत बातिल हो गई, नहीं, जैद को इसी कमरे के बराबर कोई दूसरा कमरा या जगह दे देंगे भाई उस घर में से। तो कहते हैं वो भी बैतिम मुअय्यन मिंदारिम मुश्तरकतिन, और वसीयत की किसी मुअय्यन कमरे की, बैत कमरे को कहते हैं, और वसीयत की किसी मुअय्यन कमरे की मिंदारिम मुश्तरकतिन एक मुश्तरक घर में से, तो कुस्सिमत उस घर को क्या किया गया, तकसीम किया गया। फइन असाब अल मूसी, तो अगर वो कमरा पहुंचा वसीयत करने वाले को यानी उसके हिस्से में आया, फहुवा लिल मूसा लहू, तो वो मूसा लहू के लिए होगा। व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो यानी वो कमरा उसके हिस्से में नहीं आया, फलहू कदरुहू, तो मूसा लहू के लिए उसी के बकदर होगा यानी उस जैसा एक और कमरा या उतनी जगह दे दी जाएगी। औसा ज़ैदुन लिअम्रिन बिबैतिन मुअय्यनिन मिंदारिन मुश्तरकतिन बैन ज़ैदिन व बकरिन, वसीयत की ज़ैद ने अमर के लिए एक मुअय्यन कमरे की एक ऐसे घर में से जो मुश्तरक था ज़ैद और अमर के दरमियान, तो यजिबु अन तुक़सिमा दारु, तो वाजिब है कि उस घर को तकसीम किया जाए। क्या है, उस घर को तकसीम किया जाए। मर गया ना वसीयत करने वाला, तो मर गया, बाद में क्या करेंगे, घर को तकसीम करेंगे क्योंकि जैद को उसका कमरा देना है भाई, वसीयत नाफिज करनी है, तो ये जिबु अन तुक़सिमा दारु, तो वाजिब है कि उस घर को तकसीम किया जाए। फइन वक़अल बैतु फी नसीबि ज़ैदिन, अगर वो कमरा जैद के हिस्से के अंदर आया, वसीयत किसने की, जैद ने, अच्छा कमरा किसको देना है, अमर को देना है, तो वो वाजिब है कि तकसीम करेंगे ताकि अमर को उसका हिस्सा दिया जाए जो कमरे की वसीयत हुई थी उसके लिए। फइन वक़अल बैतु फी नसीबि ज़ैदिन, अगर वो कमरा वाक़े हो गया जैद के हिस्से में, फहुवा लिल मूसा लहू, तो वो कमरा मूसा लहू यानी अमर को दे देंगे, उसके लिए हो जाएगा। وَإِن وَقَعَ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ اور اگر وہ کمرہ جو ہے شریک کے حصے میں آ گیا تو فَلِلْمُوسَى لَهُ مِثْلُ ذِرَاعِ ذَلِكَ الْبَيْتِ مِن نَصِيبِ الْمُوسِى تو موسیٰ لہو یعنی جو عمر ہے اس کے لیے مثل ذراع ذلک البیتی اسی گھر کی پیمائش کے مثل ہوگا من نصیب الموسی کس کے حصے میں سے موسی یعنی زید جو وصیت کرنے والا ہے اس کے حصے میں جو گھر آ گیا گھر کا حصہ ادھر دیکھیے زید یا وصیت کرنے والا تھا اس کو گھر کا جو حصہ مل گیا اس میں سے اس کمرے کی پیمائش جتنا ایک کمرہ یا اتنی زمین کیا کریں گے دے دیں گے موسیٰ لہو یعنی عمر کو وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ مِثْلُ ذِرَاعِ نِصْفِ ذَلِكَ الْبَيْتِ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کمرہ موسی کے حصے میں آ گیا وصیت کرنے والے کے حصے میں آ گیا تو شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے پورا کمرہ موسیٰ لہو کو دے دو لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا کمرہ موسیٰ لہو کو نہیں دیں گے آدھا کمرہ دیں گے اگر یہ پورا کمرہ بھی موسی کے حصے میں آ گیا تو بھی پورا کمرہ نہیں دیں گے بلکہ آدھا کمرہ اور اگر یہ کمرہ دوسرے آدمی کے حصے میں چلا گیا تو اب جو عمر کو حصہ دینا ہے تو پورے کمرے جتنا حصہ نہیں دیں گے بلکہ آدھے کمرے جتنا حصہ دیں گے بھئی یہ کیا وجہ ہے امام محمد رحمہ اللہ کیوں فرماتے ہیں آدھا کمرہ یا آدھا حصہ دیں گے وجہ یہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسی نے وصیت کی تو اس وقت یہ کمرہ مشترکہ تھا تو اس کمرے کے اندر آدھا حصہ موسی یعنی زید کا تھا اور آدھا حصہ دوسرے آدمی دوسرے شریک کا ہے تو زید کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے پورے کمرے کی وصیت کرے کیونکہ یہ تو پورا کمرہ اس کا ہے ہی نہیں تو اس کمرے میں اس کا آدھا حصہ ہے تو آدھے کے حصے کے اندر اس کی وصیت صحیح ہے اور آدھا دوسرے آدمی کا ہے وہ اس میں شریک ہے تو اتنے حصے میں اس کی وصیت باطل ہو جائے گی اس لیے نصف کمرہ دیں گے یا نصف کمرے جتنی پیمائش کی جگہ دیں گے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک لَهُ مِثْلُ ذِرَاعِ نِصْفِ ذَلِكَ الْبَيْتِ کہ موسیٰ لہو کے لیے اس کمرے کی نصف پیمائش کے برابر جگہ ہوگی اگر یہ اس کے حصے میں نہ آیا اور اگر حصے میں آ گیا تو نصف کمرہ ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی کما فی الاقراری جیسے کس کے اندر ہوتا ہے اقرار کے اندر اقرار کے اندر شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں وصیت میں پورا کمرہ ملے گا جیسے اقرار کے اندر پورا کمرہ دیں گے مثلا ایک گھر تھا زید اور بکر کے درمیان مشترک تھا اب وصیت والی صورت نہ بناؤ اقرار والی صورت بناؤ مکان ہے زید اور بکر کے درمیان مشترک اور زید نے اقرار کیا لوگوں کے سامنے کہ اس گھر کا فلاں کمرہ جو ہے وہ عمر کا ہے وصیت نہیں ہے بلکہ کیا کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے جب اقرار کر رہا ہے تو اب بعد میں اس گھر کی تقسیم کی گئی اگر وہ کمرہ زید کے حصے میں آیا یعنی اقرار کرنے والے کے حصے میں تو وہ کمرہ عمر کو دینا پڑے گا کیونکہ زید نے کس کے لیے اقرار کیا تھا عمر کے لیے تو عمر کو یہ کمرہ دینا پڑے گا اور اگر یہ کمرہ دوسرے آدمی یعنی بکر کے حصے میں چلا گیا تو پھر زید پر لازم ہوگا کہ گھر میں سے اس کمرے جتنی جگہ یا کوئی دوسرا کمرہ وہ عمر کو دے دے کیونکہ خود اس نے اقرار کیا ہے اور ہر آدمی اپنے اقرار کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس کا مؤاخذہ ہوتا ہے اس کے اقرار پر بات سمجھ میں آ رہی اور پھر آگے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اس مسئلے میں امام محمد رحمہ اللہ بھی ایسا ہی فرماتے ہیں اقرار کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اسی کے حصے میں آیا زید کے حصے میں پورا کمرہ آیا تو پورا کمرہ اس کو عمر کو دینا پڑے گا اور اگر دوسرے آدمی کے حصے میں چلا گیا یہ کمرہ تو زید نے اقرار کیا ہے تو اس کو پورے کمرے جتنی جگہ دینی پڑے گی کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے اس میں وہ بھی یہی فرماتے ہیں تو بعض فرماتے ہیں اس مسئلے کے اندر وہ بھی شیخین رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں اس مسئلے میں بھی وہ اختلاف کرتے ہیں کہ اس اقرار کے اندر بھی آدھا ہی کمرہ دیں گے یا آدھے کمرے جتنی جگہ دیں گے بھائی تو اس پر امام محمد رحمہ اللہ پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر آدھا کمرہ دیں یا آدھے کمرے جتنی جگہ دیں تو پھر تو آپ کا یہ قول پچھلے قول جیسا ہی ہوا، اقرار میں بھی آپ کا وہی قول جو کس کے اندر تھا، وصیت کے اندر تھا، پھر تو کوئی فرق نہیں، پھر تو آپ کا اصول ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا وہ قول لے لیا جائے کہ آپ اس مسئلے میں کس کے ساتھ ہیں، شیخین رحمہ اللہ کے ساتھ، تو پھر کیا وجہ ہے؟ وصیت کے معاملے میں آپ نے کہا تھا آدھا کمرہ ملے گا یا آدھے کمرے جتنی جگہ ملے گی، اور اقرار کے مسئلے میں آپ کہتے ہیں پورا کمرہ ملے گا یا پورے کمرے جتنی جگہ، تو یہ آپ نے دونوں میں فرق کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں صاحب ہدایہ وغیرہ، امام محمد رحمہ اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ وصیت اور اقرار میں فرق ہے. وصیت اپنے مال کے بارے میں تو کی جا سکتی ہے، دوسرے کے مال کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی. زید کی گاڑی ہے اور ایک شخص مرنے لگا اور اس نے کہا بھائی وہ جو زید کی گاڑی ہے اس کی میں وصیت کرتا ہوں، کس کے لیے؟ بکر کے لیے. بھائی یہ گاڑی تو کس کی ہے، کسی اور کی ہے، یہ آپ کیسے وصیت کر سکتے ہیں؟ تو غیر کے مال کی وصیت تو نہیں کی جا سکتی، لیکن غیر کے مال کا اقرار کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ مثلا بکر کے پاس گاڑی تھی اور زید نے کہا کہ بھائی یہ گاڑی عمر کی ہے. کس کی ہے؟ عمر کی ہے. اب دیکھو یہ گاڑی کسی اور کی ہے اور زید اس کے لیے اقرار کر رہا ہے، عمر کے لیے اقرار کر رہا ہے، تو یہ معتبر ہے. چنانچہ اگر کسی وقت زید نے یہ گاڑی خرید لی تو عمر قاضی کے پاس جا کر مجبور کر سکتا ہے کہ قاضی صاحب اس نے اس گاڑی کا میرے لیے اقرار کیا تھا، لہٰذا یہ گاڑی مجھے اب دلائی جائے. تو وصیت غیر کے مال کے بارے میں وہ تو صحیح نہیں، لیکن اقرار غیر کے مال کے بارے میں صحیح ہے. اور وہ کب لیں گے؟ ابھی نہیں لیں گے، بلکہ جب اس کے پاس آ جائے گا، مقر کے پاس وہ چیز آ گئی تو اس سے وہ چیز وصول کر لیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرق سمجھ میں آیا؟ تو امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ پچھلا مسئلہ وصیت والا تھا، اور وصیت اپنے مال کے بارے میں تو ہو سکتی ہے، غیر کے مال کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی، اور یہ مسئلہ اقرار والا ہے اور غیر کے مال کے بارے میں اقرار صحیح ہے. اور وہ کب دلائیں گے؟ اگر وہ کبھی اس کا مالک بن گیا، پھر اس کے اقرار پر مؤاخذہ ہوگا، اگر مالک ہی نہیں ہے پھر مؤاخذہ نہیں. تو شیخین فرماتے ہیں کہ وصیت میں بھی مسئلہ جو ہے جیسے تھا، وصیت کے اندر کیا تھا اوپر، موسیٰ لہو کو پورا کمرہ دیں گے یا پورے کمرے جتنی جگہ دیں گے، کما فی الاقراری، جیسے کس کے اندر ہے، اقرار کے اندر ہے. اے ان کان مکان الوصیت اقرار، یعنی اگر وصیت کی جگہ پر اقرار ہوا تو فل حکم کذالک، تب بھی حکم ایسا ہی ہے، یعنی پورا کمرہ دیں گے یا کمرے جتنی جگہ دیں گے. قیل بالاجماع، کہا گیا ہے یہ بالاجماع ہے، یعنی ہمارے تینوں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. وقیل فیہ خلاف محمد رحمہ اللہ، اور کہا گیا ہے کہ اس میں امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. تو اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ انہوں نے فرق اگر کیا تو فرق کیوں کیا؟ تو جواب دے دیا، کیونکہ غیر کے مال کے بارے میں وصیت تو نہیں ہو سکتی لیکن اقرار ہو سکتا ہے، تو اقرار کے اندر پھر پورا کمرہ دیں گے یا پورے کمرے جتنی جگہ دیں گے. وبألف عين من مال غيره له الإجازة بعد موت الموصي والمنع بعدها. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے غیر کے مال کے بارے میں وصیت کر دی، کس کے بارے میں؟ کسی غیر کے معین مال کے بارے میں وصیت کر دی. مثلا ایک آدمی نے زید کے پاس 1,00,000 روپیہ بطور امانت کے رکھوایا تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ یہ والے جو 1,00,000 ہیں یہ خالد کو دے دینا میرے مرنے کے بعد. اب بھائی یہ مال تو کسی اور کا ہے، امانت ہے، آپ کیسے اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ معین مال کی اس طرح اگر کوئی وصیت کرے تو وصیت صحیح ہوگی، لیکن یہ اس اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہے. اگر وہ اجازت دے دیتا ہے کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے اس کی وصیت نافذ کر دو، جس کے لیے اس نے کہا وصیت کی تھی اس کو، تو اس کو دے دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کس کی اجازت پر موقوف ہے؟ مالک کی اجازت پر. تو یہ مانا ہے وبألف عین من مال غیره، اور وصیت کی ایک ایسے 1,000 کی، عین جو معین ہیں، من مال غیره، کس میں سے؟ غیر کے مال میں سے، ان کی وصیت کی. لہ الاجازت بعد موت الموصی، تو وہ جو مالک ہے، وہ جو غیر ہے، وہ اجازت دے سکتا ہے موصی کی موت کے بعد. उसके बाद वो इजाजत दे सकता है। वल मन उबादहा, और नीज उसके लिए मना करना भी है, बादहा अई बाद अल इजाजत, इजाजत के बाद, इजाजत के बाद भी वो मना कर सकता है। मसलन उसने कहा कि हां ठीक है ये 1 लाख दे दो, जिसके बारे में वसीयत की है उसको दे दो, लेकिन अभी उसके हवाले किया नहीं और उससे पहले ही वो इनकार करना चाहता है तो इनकार फिर कर सकता है। देने के बाद इनकार नहीं कर सकता, हां देने से पहले इनकार कर सकता है। क्यों भाई? ये हिबा बन जाएगा, गोया वो हिबा कर रहा है अपनी तरफ से। मालिक क्या कर रहा है?
हिबा
भाई, वसीयत तो नहीं है ना, वसीयत, क्योंकि ये तो माल ही किसी और का था, लेकिन अब मालिक कह रहा है कि हां ठीक है दे दो, तो गोया ये मालिक क्या कर रहा है? उसको हिबा यानी तबर्रुअ, अपनी तरफ से एक एहसान कर रहा है। और तबर्रुअ के अंदर जब तक दूसरा उस चीज पर कब्जा ना कर ले वो लाजिम नहीं होता। तो जब तक उसने कब्जा नहीं किया, इसने इजाजत दे दी है, फिर भी ये क्या कर सकता है? रुजू कर सकता है। बात समझ में आ गए? तो ये मानना है कि लहुल इजाजत बाद मौत अल मौसी, और उस गैर के लिए जायज है कि वो इजाजत दे दे वसीयत करने वाले की मौत के बाद। वल मन उबादहा, और उसके लिए जायज है रोकना बादहा अय बाद अल इजाजत, इजाजत के बाद। भाई क्यों रोक क्यों सकता है बाद में? कहते हैं फइन्नहु इन अजाज़ा फइजाज़तुहु तबर्रुन, इसलिए क्योंकि अगर उसने इजाजत दे भी दी तो फइजाज़तुहु तबर्रुन, तो इसकी इजाजत तबर्रुअ है। तबर्रुअ कहते हैं अपनी तरफ से कोई चीज देना एहसान के तौर पर, यानी जो इस पर लाजिम ना हो। तो फ इजाजत हो तबर्रुअ, तो इसकी इजाजत जो है वो तबर्रुअ है, एहसान है। तो हिबा में भी क्या होता है? तबर्रुअ होता है ना, कोई चीज लाजमी तो नहीं होती आप पर देना, तोहफा दे रहे हैं तो तबर्रुअ है। और तबर्रुअ के अंदर याद रखो जब तक दूसरे के कब्जे में चीज नहीं पहुंची उसमें रुजू किया जा सकता है। फइजाजत हु तबर्रुन, तो उसका इजाजत देना तबर्रुन यानी एहसान है। फलहु अय्यम तनिया मिन तस्लीमी, तो उसके लिए जायज है कि वो रुक जाए सुपुर्द करने से, हवाले ही न करे, वो हवाले करने से रुक जाए। फइन अकर अहदुल इब्नैन बादल किस्मत बिवसीयति अबीहि बिस्सुलुसी, सूरत मसला ये कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके दो बेटे थे, उन दोनों बेटों ने माल को आपस में तकसीम कर लिया, आधा हिस्सा माल का एक बेटे ने ले लिया और आधा हिस्सा दूसरे बेटे ने ले लिया। बाद में उनमें से एक बेटा जो है वो तबलीग में गया, उसका जहन ठीक हो गया और उसने फिर इकरार किया कि मेरे अब्बा जान ने वसीयत की थी कि इस माल का सुलुस जो है वो बकर को दे देना। बात समझ में आ गई? तो उसने इकरार कर लिया कि मेरे बाप ने क्या कहा था, मेरे माल का सुलुस किसको दे देना? बकर को दे देना, बकर। तो अब क्या करेंगे? तो कहते हैं कि कियास तो ये तकाजा करता है कि ये वाला बेटा जिसने इकरार किया है, जो इसको हिस्सा मिला है, उसका आधा हिस्सा बकर को दे दे। किसको दे दे?
बकर को दे दे।
क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि इसके बाप ने बकर के लिए सुलू से माल की वसीयत की है। तो दो बेटे हैं और वो एक वसीयत है, वसीयत वाले को सुलुस दे दिया, बाकी कितने बचे? दो सुलुस। और वो दो सुलुस दो बेटों को मिले, तो एक सुलुस एक बेटे को और एक सुलुस दूसरे बेटे को। गोया बकर का हिस्सा दोनों बेटों के बराबर है, हर हर बेटे को भी सुलुस और बकर को भी सुलुस। तो बकर का हिस्सा बेटों के बराबर है। और तो जब इस बेटे ने इकरार कर लिया बकर के लिए, तो अब इसका और बकर का हिस्सा बराबर होना चाहिए। और उसका तरीका यही है कि इस बेटे को जितना माल मिला है आधा बकर को दे दे, देखो इसका और बकर का हिस्सा बराबर हो गया। बात समझ में आ गई? लेकिन इस्तेहसानन ये अपने माल का सुलुस देगा बकर को। कियास तो तकाजा करता है कि इस इकरार करने वाले को अपने माल का निसफ देना चाहिए, अपने हिस्से का निसफ देना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन निसफ नहीं देगा बल्कि सुलुस देगा। भाई क्यों? कहते हैं इस्तेहसानन, इस्तेहसान की वजह यह है कि इसने जब इकरार किया कि मेरे अब्बा जान ने क्या कहा था कि बकर को मेरे तरके में से कितना दे देना? सुलुस दे देना। तो उसने बकर के लिए जिस सुलुस का इकरार किया वो सिर्फ इसके हिस्से में इसने इकरार किया या वो सुलुस फैला हुआ है दोनों भाइयों के हिस्सों में, वो फैला हुआ है दोनों भाइयों के हिस्सों में, वो सुलुस फैला हुआ है। तो इसने उसके लिए इकरार किया ऐसे सुलुस का जो फैला हुआ है दोनों भाइयों के हिस्सों में, तो लिहाजा इसके हिस्से के अंदर भी सुलुस और दूसरे के हिस्से के अंदर भी सुलुस, वो सुलुस फैला हुआ था, तो अपने हिस्से में से ये सुलुस दे देगा और दो सुलुस इसके पास रह जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई समझ में? इसको निसफ मिला था ना, और कियास तो क्या तकाजा करता है, कियास क्या तकाजा कर रहा था कि अपने हिस्से का निसफ देना चाहिए, क्योंकि बाप ने जब सुलुस की वसीयत की है तो इस वसीयत का तकाजा क्या है, हर भाई को सुलुस सुलुस और वसीयत वाले को भी सुलुस, तो देखो तीनों का हिस्सा बराबर है, तीनों का हिस्सा। और यहां आप एक इकरार कर रहा है, दूसरे ने इकरार नहीं किया, जब दूसरे ने इकरार नहीं किया तो उससे तो हम माल नहीं ले सकते, इसने इकरार किया है और हर आदमी अपने इकरार पर माखूज है, जिम्मेदार है, तो इससे इकरार के मुताबिक सुलूक होना चाहिए। और इकरार तो तकाजा करता है कि वसीयत वाले का हिस्सा बेटों के बराबर है, और यहां बराबरी कैसे हो सकती है कि यह अपना आधा हिस्सा उसको दे दे, आधा ये रख ले, अब दोनों में क्या हो गई बराबरी? नहीं समझ में आ रही भाई। अगर वसीयत को नाफिस करते और दोनों बेटे मान लेते, दोनों बेटे और वसीयत को नाफिस करते तो उसको कितना मिलता वसीयत वाले को? सुलुस। और दोनों बेटों को मिलते दो सुलुस, तो हर बेटे को गोया सुलुस, तो एक बेटे को भी सुलुस, दूसरे को भी सुलुस, वसीयत वाले को भी सुलुस, तो देखो तीनों का हिस्सा बराबर बराबर बनता है। तो ये तकाजा कर रहा है कि यहां भी हिस्सा बराबर होना चाहिए जब एक बेटे ने इकरार किया है, और बराबर होने की क्या सूरत है कि ये बेटा अपना आधा हिस्सा उसको दे दे और आधा खुद रख ले। अब देखो दोनों का हिस्सा क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन इस्तेहसानन हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाला बेटा अपना आधा हिस्सा उसको दे, बल्कि हम कहेंगे ये अपने हिस्से का सुलुस दे दे। क्या करे? सुलुस दे दे। इसलिए क्योंकि जब इसने इकरार किया कि मेरे वाली साहब ने इसके लिए सुलुस की वसीयत की थी, तो ये सुलुस इसने सिर्फ अपने हिस्से में इकरार किया या दोनों भाइयों के हिस्से में सुलुस का इकरार हो गया? दोनों, यानी वो जो मूसा लहुम का सुलुस फैला हुआ है दोनों के हिस्सों के अंदर, जब दोनों के हिस्सों में सुलुस है तो इसके हिस्से में, यानी उसके हिस्से में से भी सुलुस निकाला जाए और इसके हिस्से में से भी सुलुस, लेकिन उसने तो इकरार किया नहीं, तो इसके हिस्से में से सुलुस निकाल लेंगे और वो उसको दे देंगे भाई, और बाकी दो सुलुस जो है वो इसके पास रह गए। देखो मसलन अगर कुल तरका होता 6000, 6000 में से 3000 एक भाई ने ले लिया और 3000 दूसरे भाई ने ले लिया, अब अगर दोनों भाई इकरार कर लेते फिर हम तकसीम किस तरह करते? 2000 वसीयत वाले को, 2000 एक भाई को और 2000 दूसरे भाई को, दो 2000 सबको मिलने थे, लेकिन अब तकसीम हो चुकी है, 3000 एक भाई को मिला है, 3000 दूसरे भाई को। अब ये वाला भाई इकरार करता है कि मेरे वाले साहब ने वसीयत की थी इसके बारे में सुलुस की, तो अब कयास तो ये तकाजा करता है कि ये अपना आधा माल उसको दे दे, यानी 1500 दिरहम उसको दे दे वसीयत वाले को और 1500 खुद रख ले। ये कयास तकाजा कर रहा है क्योंकि हर एक का हिस्सा बराबर होना चाहिए था ना, तो इसका भी हिस्सा उसके साथ बराबर होना चाहिए, और बराबरी की यही सूरत है, आधा हिस्सा उसको दे दे और आधा हिस्सा खुद रख ले। जिस भाई ने करार नहीं किया उसको ना देखें, उसने तो इकरार नहीं किया, वो अपना पूरा हिस्सा रखेगा। जिस भाई ने इकरार किया, कयास ये तकाजा करता है कि इसका और वसीयत वाले का हिस्सा बराबर होना चाहिए, लिहाजा आधा ये रखे और आधा वो रखे। चुनांचे इमाम जुफर यही फरमाते हैं कि आधा इसको रखना चाहिए और आधा दूसरे को देना चाहिए। लेकिन इस्तेहसानन हम कहते हैं कि ये अपने हिस्से का, यानी 3000 का आधा नहीं देगा, 3000 का सुलुस दे देगा, और 3000 का सुलुस कितना? 1000। तो 1000 मूसा लहू को दे देगा और 2000 यानी दो सुलुस ये बेटा रख लेगा। भाई क्यों? वजह क्या? वजह ये कि इसने क्या कहा था, मेरे अब्बा जान ने इसके लिए वसीयत की है सुलुस की, और जिस सुलुस की वसीयत का ये इकरार कर रहा है वो सुलुस कितना बनता था? 2000। और सिर्फ इसके हिस्से में से था या दोनों भाइयों के हिस्से में था? जब दोनों भाइयों के हिस्से में 2000 था तो इसके हिस्से में कितना आना चाहिए? एक हजार आना चाहिए, हमने भी यही कहा एक हजार ये दे दे और दो हजार खुद रख ले। तो इसने जिस सुलुस का इकरार किया वो सिर्फ अपने हिस्से में इकरार नहीं किया बल्कि ऐसे सुलुस का इकरार किया जो फैला हुआ है दोनों भाइयों के हिस्से में, और जब दोनों हिस्सों भाइयों के हिस्से में फैला है तो उसका निसफ इस पर आ जाएगा और इसके हिस्से का सुलुस सिर्फ दे देंगे। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। कहते हैं फइन अकर्रा अहद लिबनैनी बादल किस्मति बिवसीयति अभी ही बिसुलुसी, अगर इकरार कर लिया दो बेटों में से एक ने तकसीम के बाद अपने वालिद की वसीयत का, अपने वालिद की सुलुस की जो वसीयत थी उसका इकरार कर लिया, सूरत समझ में आ गई, दफा सुलुसा नसीबी ही, तो वो दे देगा अपने हिस्से का सुलुस, अपने हिस्से का सुलुस देगा निसफ नहीं देगा। हाँ दा इंदना ये हमारे नजदीक है, वल कियासु अन युअतियहु निसफ माफी यदि ही, और कियास तो ये है कि ये दे दे निसफ माफी यदि ही निसफ उसका जो इसके कब्जे में है निसफ दे दे। वह हुआ कौल जुफर रहिमहुल्ला, और यही कौल है इमाम जुफर रहिमहुल्ला का, ले अन्न इकरारहु बिसुलुसी यूजिबु मुसावातहु इयाहु, इसलिए क्योंकि इसने जो सुलुस का इकरार किया वो वाजिब करता है मुसावातहु इयाहु कि इसके साथ बराबरी हो, उस मुसालहू की इसके साथ बराबरी हो। क्यों? क्योंकि वालिद ने क्या कहा था सुलुस देना, और हर भाई को भी कितना मिलता सुलुस सुलुस, तो बराबरी होनी चाहिए थी। लिअन्न इकरारहु बिस्सुलुसी यूजिबु मुसावातहु इयाहु, इसलिए क्योंकि इसका सुलुस का इकरार कर लेना यह वाजिब करता है मुसावातहु इयाहु कि वो मूसा लहू जो है वो इसके साथ बराबर हो, यानी आधा आधा माल कर लेना चाहिए। वजहुल इस्तेहसानी, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नहु अकर्रा बिसुलुसिन शाएइन, कि इसने सुलुसे शाएअ का इकरार किया है, उस सुलुस का जो फैला हुआ है यानी दोनों भाइयों के हिस्से में फैला हुआ है उसका इकरार किया है। फयकून मुकिरन बिसुलुसी माफी यदि ही, तो ये इकरार करने वाला है उस सुलुस का जो इसके कब्जे में है। जब दोनों के हिस्सों में से सुलुस निकल रहा है तो इसके हिस्से में से भी सिर्फ कितना निकलना चाहिए सुलुस ही निकलना चाहिए। बात समझ में आ गई। फइन वलदतिल मूसा बिहा बाद मौतिही फहुमा लहू, सूरत मसला ये, एक शख्स की एक बांदी थी, उसने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद ये बांदी जैद को दे देना। इस शख्स का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद अभी बांदी हवाले नहीं की थी कि बांदी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, तो उस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। तो याद रखो हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं कि इस सूरत में यह बच्चा जो है यह बांदी के ताबेअ है, लिहाजा अगर यह बच्चा और बांदी दोनों सुलुस में से निकल आते हैं तो ये दोनों उस वसीयत वाले के हवाले कर दिए जाएंगे अगर ये सुलुस में से निकल आते हैं, और अगर ये दोनों सुलुस में से नहीं निकलते तो फिर क्या करेंगे। तो इसमें इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम साहेब फरमाते हैं कि अगर दोनों सुलुस में से नहीं निकलते तो सुलुस के बकदर अव्वल बांदी को दे देंगे, अगर सुलुस में से बांदी निकल आती है बांदी को दे देंगे और बच्चे को नहीं देंगे, और अगर सुलुस जो है वो बांदी से बढ़ गया तो फिर बांदी तो पूरी दे देंगे और बच्चे में से जितना हिस्सा जायद है वो बच्चे में से दे देंगे। किसमें से दे देंगे? देखो आगे वो मिसाल भी बयान करेंगे। फर्ज करें एक आदमी है, उसका कुल माल है 600 दिरहम और उसके पास ये बांदी भी है, इस बांदी की कीमत थी 300 दिरहम, और फिर इस बांदी ने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे की कीमत भी है 300 दिरहम, क्योंकि वो लड़का है और लड़कों की कीमत ज्यादा होती है, तो बांदी की कीमत भी 300 दिरहम, लड़के की कीमत भी 300 दिरहम, और इसके अलावा उसका माल भी है 600 दिरहम, तो कुल 1200 दिरहम हो गए, 1200 दिरहम हो गए। अब उस शख्स ने क्या वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी ये बांदी जैद को मसलन दे देना। अब हमने देखा तो बांदी की कीमत है 300, बच्चे की कीमत है 300, 3 और 3 हो गए 600, तो होना तो ये चाहिए था कि दोनों दे दें, लेकिन ये दोनों सुलुस में से निकलते नहीं, तो 1200 का सुलुस कितना है, سلس 400. تو اس 400 میں سے باندی جو اصل ہے وہ تو پوری باندی تو اس کو دے دیں گے اور باقی کتنا بچا 100 درہم رہ گئے. وہ اس بچے کی قیمت کتنی ہے 300. تو اس بچے کا ایک سلس اس کو دے دیں گے, پوری باندی بھی دے دیں گے اور بچے کا ایک سلس بھی دے دیں گے. معلوم ہوا وصیت اصلاً جو ہے باندی کے اندر نافذ کریں گے اور طبعاً کس کے اندر؟ بچے کے اندر نافذ کریں گے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں, باندی اور بچہ دونوں کے اندر وصیت اکٹھی برابر نافذ ہوگی. اس لیے کیونکہ جب اس نے باندی کے بارے میں وصیت کی تو باندی کے پیٹ میں بچہ بھی تھا, تو وہ بچے کے بارے میں بھی وصیت ہو گئی. لہذا دونوں برابری کے ساتھ وصیت دونوں پر نافذ کریں گے. تو باندی کتنے کی؟ باندی کتنے کی؟ 300 کی. بچہ کتنے کا؟ 300 کا. کل کتنے ہوئے؟ 600. لیکن وصیت سلس میں نافذ کرنی ہے اور سلس کتنا ہے؟ 1200 کل مال ہے نا, تو 1200 کا سلس کتنا؟ 400. تو یہ 400 میں سے 200 جو ہے باندی کے اندر وہ حصہ دے دیں گے وصیت والے کو اور 200 بچے میں سے حصہ دے دیں گے وصیت والے کو. تو معلوم ہوا وہ جو وصیت والا ہے باندی کے بھی 2 سلس کا مالک ہو گیا اور بچے کے بھی 2 سلس کا مالک ہو گیا. امام صاحب کے نزدیک باندی پوری دیں گے اور بچے کا 1 سلس, اور صاحبین فرماتے ہیں باندی کے بھی 2 سلس دے دیں گے اور بچے کے بھی 2 سلس دے دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی دیکھیے بھائی آگے مزید تفصیل آ رہی ہے. کہتے ہیں فَإِن وَلَدَتِ الْمُوسَى بِهَا, اگر بچے کو جنم دیا موسیٰ بِهَا نے, میں نے آپ کو بتلایا تھا وصیت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ موسی. اور جس کے لیے وصیت کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ موسی لہو. اور جس چیز کی وصیت کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ موسی بھی. تو یہ اب اسی کا ذکر آ رہا ہے. فَإِن وَلَدَتِ الْمُوسَى بِهَا, موسی بِهَا نے بچے کو جنم دیا, یعنی وہ باندی جس کی وصیت کی گئی تھی اس نے بچے کو جنم دیا. بعد موتی ہی, موسی کے مرنے کے بعد, فَهُمَا لَهُ, تو یہ دونوں موسی لہو کے لیے ہوں گے. کون دونوں؟ ایل امت الموسیٰ بہا ولدہا, یعنی موسیٰ بہا باندی اور اس کا بچہ دونوں موسیٰ لہو کے ہو جائیں گے. یہ تینوں ائمہ کے نزدیک ہیں بشرطے کہ یہ سلس میں سے نکلیں. دونوں ہوں گے ان خرجا من السلسی, اگر یہ دونوں سلس میں سے نکل آئیں. وہ الا, اور اگر ایسا نہ ہو یعنی دونوں سلس سے نہیں نکلتے, تو اخذ السلس منہا ثم منہ, تو سلس لے لے گا مینہا کس میں سے؟ پہلے باندی میں سے, ثم منہ پھر کس میں سے؟ بچے میں سے. امام صاحب کے نزدیک کیونکہ باندی اصل ہے پہلے اسی کے اندر پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. لان تبع لا یزاحم الاصل, اس لیے کیونکہ جو تابع ہوتا ہے وہ اصل کا مقابل نہیں ہو سکتا, اور باندی کیا ہے؟ وصیت میں اصل, اور بچہ کیا ہے؟ تابع. تو پہلے وصیت کس میں پوری کریں گے؟ اصل میں, اس کے بعد تابع میں. وعندہما, اور صاحبین کے نزدیک, یاخذ من کل واحد بالحصتی, کہ وہ موسیٰ لہو لے لے گا ان دونوں میں سے ہر ایک سے حصے کے بقدر, ہر ایک سے حصے کے بقدر لے لے گا. فَإِذَا كَانَ لَهُ 600 دِرْهَمٍ, پس اگر مرنے والے کے پاس 600 درہم تھے, وَأَمَّتُن تُسَاوِي 300, اور ایسی باندی تھی جو 300 کے برابر ہے, فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي 300 دِرْهَمٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوسِي, پھر اس باندی نے جنم دیا ایک بچے کو جو برابر تھا 300 درہم کے موسی کی موت کے بعد. حتا سارا مالہ 1200, یہاں تک کہ اس موسی کا مال جو ہے 1200 درہم ہو گیا. فسلس المال 400, تو اس مال کا سلس جو ہے وہ 400 ہے. فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, تو امام صاحب کے نزدیک, للموسیٰ لہ الام وسلس الولد, موسیٰ لہو کے لیے ماں ہوگی اور سلس ہوگا ولد کا. ماں یعنی باندی وہ 300 درہم کی ہے اور بچے کا 100 درہم یعنی سلس ہو جائے گا. وعندہما, اور صاحبین کے نزدیک, سلسا کل منہما, ان دونوں میں سے ہر ایک کے 2 سلس جو ہیں وہ موسیٰ لہو کے ہو جائیں گے. 200 کس میں سے؟ باندی میں سے یعنی 200 لوز، اور 200 حصہ کس میں سے؟ بچے میں سے، یعنی اس کے بھی 200 لوز. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.